نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير آمين يا رب العالمين وأتم الحج والعمرة لله تو پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے للہ اس کو ذرا سرکل کر لیں کہ حج اور عمرہ کس کے لیے کرنا ہے للہ اللہ کے لیے شاپنگ کے لیے نہیں رونق میلے کے لیے نہیں سیر کے لیے نہیں کہ چلو کوئی دوسرا ملک ہی دیکھ لیں گے ہاں ہمارا تو زیادہ تر شاپنگوں کے لیے ہوتا ہے یہاں سے بھی جاتے ہیں تو شاپنگ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے حج اللہ کے لیے تو پھر دھیان کس طرف رہنا چاہیے بازاروں کی طرف نہیں اللہ کی طرف ظاہر ہے جس کے لیے آئے ہیں تو اس کا ہی ہے نا دیکھیں یہ یاد رکھیے کہ حج جو ہے ایک تو سب سے پہلی بات ایک حدیث میں آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے اب یہاں سے جہاد میں قتال اور باقی جہاد کا بھی فرق آپ کو سمجھ آ جائے گا فرمایا ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے قتال نہیں ہے وہ والا جہاد ہے ان کے اوپر اس کا مطلب وہ جہاد بھی ہوتا ہے سارے جہاد ہم تو یہ سوچ لیتے جہاد کا مطلب کیا بس تلوار اٹھا کے لڑنا نہیں جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے جہاد کی ایک برانچ ہے قتال تو فرمایا ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے اور وہ جہاد کون سا ہے وہ حج اور عمرہ ہے سبحان اللہ یعنی عورتوں کا جہاد کیا ہے حج اور عمرہ آپ کے اوپر لڑنا ہے ہی نہیں آپ نے جو حج اور عمرہ کیا ہے وہی آپ کا جہاد ہے تو جہاد تو اللہ کے لیے ہوتا ہے ہم نے کسی اور پرپس کے لیے بنا لیے نہ یہ ہونا چاہیے کہ حج اور عمرہ کس لیے تاکہ ہم حاجی صاحب کہلائیں حجن بی بی کہلائیں اور نہ اس لیے کہ اس کے بعد میری دعوتیں ہوں اور نہ اس لیے کہ مجھے تحفے ملیں ان چیزوں کے لیے نہیں ہے حج اور نہ ہی عمرہ اللہ کے لیے دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا پھر پڑھا اللہ کے لیے لڑنا پھر پڑھا اللہ کے لیے خرچ کرنا جس سے اتنی محبت ہو جائے کہ انسان اس کے لیے بھوکا پیاسا رہے جس سے اتنی محبت ہو جائے کہ انسان اس کے لیے بے دریغ خرچ کرے جس کے سے اتنی محبت ہو جائے کہ انسان اس کے لیے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے تو بتائیں پھر اس محبت کا اندازہ لگائیں کتنی محبت ہوگی جب اتنی محبت ہو جائے نا تو پھر انسان کا جی چاہتا ہے نا کہ میں اس سے ملوں جس سے مجھے اتنی محبت ہے میں اس کو دیکھوں تو صحیح تو اس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر اس کے گھر کو ہی دیکھ سکتے تو اس کے گھر کا ہی دیدار کر لوں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر بلاتے ہیں کہ آ جاؤ میرے گھر تو یہ ہے محبت کا سفر جس میں انسان اللہ کی محبت میں دیوانہ وار ہو کے جاتا ہے اسی لیے کوئی زیب و زینت نہیں ہے نا کوئی رنگ برنگے زرق برق لباس اور میک اپ اور وہ نہیں ہے اس لیے کہ آؤ تو دیوانوں کی طرح آؤ جیسے دیوانے آتے ہیں نا بال بکھرے ہیں کنگیاں ہوئی نہیں ہوئی ہیں سادے کپڑے ہیں خوشبوئیں لگی نہیں ہوئی بس دیوانوں کی طرح چلے چلے آ رہے ہیں سبحان اللہ کفن پہن لو اتنا سادہ لباس ہو اور اپنے گھروں سے شور مچاتے بھی آؤ جیسے دیوانے شور مچاتے آتے ہیں لبیک اللہم لبیک کا شور کوئی عبادت اس شکل کی نہیں ہے ہے نا کسی عبادت میں ایسا نہیں ہے ایسا شور مچانا اس لیے کہ یہ عبادت ہے محبت کا سفر اور پھر آپ کسی کے گھر کے چکر کب لگاتے ہیں کس کے گھر کے انسان چکر لگاتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے نا محبوب کے گھر کے چکر हो अल्लाह के घर के हम चक्कर लगाते हैं वहां, लेकिन बाज लोग जब वहां जाते हैं तो चूंकि ये जहन में होता ही नहीं है कि हम किसके लिए आए, किसकी मोहब्बत में आ रहे हैं, ये चीजें होती नहीं, ना मोहब्बत दिल में ना कुछ, बस हज करने जा रहे हैं। तो फिर वहां पे भी जाकर क्या करते हैं, आए हमें तो ये तकलीफ हो गई, इतने पैसे हमने खर्च किए थे, हमें खाना अच्छा नहीं मिला, हमें ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं मिली, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि किस लिए ये सफर किया जाता है, किसकी तलाश में मैं आई हूं। ठीक है, हज में शरई अहकामात हैं जो अब आगे हम पढ़ेंगे, कुछ वहां की जरूरियात हैं, कुछ सफर के लवाजमात हैं, मगर जो स्पिरिट है हज की ना, वो है अल्लाह की तलाश, अपना किबला बदलना है, ये दिल अल्लाह को देना है, अपना दिल अल्लाह की तरफ मोड़ना है। हज से पहले जिंदगी जो वह जिस तरफ भी आपने किबला अपना बनाया हुआ था, किसी को भी किबला बनाया हुआ था, अब अपना किबला अल्लाह को बनाना। जो अपनी जिंदगी किसी और की मर्जी से गुजार रहे थे, किसी और की तरफ रुख किया हुआ था, अब रुख बदल के अल्लाह की तरफ कर लेना। और उसके बाद वहां पे ही नहीं, सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक है ना, सारी जिंदगी कहना उसके बाद लब्बैक लब्बैक लब्बैक, यही गर्दान रहनी है सारी जिंदगी। अल्लाह मैं हाजिर, अल्लाह मैं हाजिर, जो अल्लाह का हुक्म आए लब्बैक लब्बैक। और सुभान अल्लाह, देखें फर्ज नमाजों का जब जिक्र आता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों पर नमाजें उनके औकात के साथ फर्ज की गई हैं। रोजों का जिक्र आया तो आपने पढ़ा कि कैसे रोजे कुतिबा अलैकुम सियाम, इस तरह से करके रोजे फर्ज किए गए। फिर आप जकात को देखिए, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, इस तरह से करके उसकी बात है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज को फर्ज किया ना सूरह आले इमरान में, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो हम पढ़ेंगे, तो कुतिबा अलैकुमुल हज्जा ये नहीं कहा गया, क्या कहा गया, वलिल्लाही। वहां पे भी क्या है, सबसे पहला वर्ड वलिल्लाही, अल्लाह के लिए, यानी मैं हज पे क्यों जा रही हूँ, अल्लाह के लिए। मैं किधर जा रही हूँ, अल्लाह की मुलाकात के लिए, उसकी खातिर, उससे मिलने, उसके घर को। लिल्लाही अलन्नासी, अल्लाह के लिए है लोगों पर, यानी लोगों के ऊपर, सारे लोगों पे। अलन नासी, अलल मुस्लिमीन नहीं, अलन नासी यानी काफिर है, मुनाफिक है, मुशरिक है, सब मुस्लिम तो है ही मुस्लिम, बाकी भी इस्लाम ले आओ, सब लोगों के लिए। हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, हज है इस घर का। फिर उसके बाद फरमाया जो इस्तात रखे इसकी, जो इस्तात रखे, वो बाद में फरमाया, पहले फरमा दिया आलम नासी, सबके लिए, सबके लिए, सबको ओपन इनविटेशन है, लोगों में कोई भी आना चाहे इस्लाम ले और अल्लाह की तरफ आ जाओ। तो अल्लाह ने अपने घर सबको ही बुला लिया, सारे ही आ जाओ। एक वाहिद बादशाह है जो सवालियों का शोर देख के, उनका हजूम देख के खुश होता है। एक वाहिद बादशाह है जो मोहताजों की, फकीरों की इतनी इतनी लाइनें और इतने इतने हजूम और इतने इतनी फरियादें सुन सुन के नाराज नहीं होता और खुश होता है। कोई और ऐसे नहीं खुश होता, वो सबको बुला रहा है, सारे ही आ जाओ। इसीलिए तो ये हदीस है ना कि जो कोई इस्तात भी रखता हो, जिसको कुदरत भी हो, फिर कुदरत के बावजूद अगर वो हज ना करे, उसके लिए बराबर है यहूदी हो के मरे या ईसाई। यानी इस्तात के बावजूद अगर तुम्हें परवाह नहीं है और तुम अल्लाह के घर नहीं आते, तो वह मन कफर है। इसीलिए तो अल्लाह ने उस आयत में भी फरमाया ना, जो नहीं आता हज पे, तो ये ना समझना कि अल्लाह को तुम्हारी जरूरत है, वो तो गनी है, वो गनी है, उसको वो बेनियाज है। तो इसको कुफर कहा गया। वैसे नहीं कि इंसान काफिर हो जाता है, मगर इतकादी काफिर नहीं, मगर एक तरह का ये भी कुफर है कि कोई इंसान इस्तात रखता है, जा सकता है, फिर भी उसको परवाह ही नहीं है, उसको इतनी मोहब्बत है ही नहीं कि वो अल्लाह के घर जाए, तो ये इसको कुफर है कहा गया। جو استطاعت رکھنے کے باوجود نہ جائے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یعنی وہ عیسائی ہو کے مرے, یہودی ہو کے مرے, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. جاؤ پھر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے, یہ اللہ کے لیے کام کرنے والا اس حدیث میں ہے, ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور حج مبرور یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا حج جس میں رفع فسوق اور جدال نہیں ہے, وہ آگے ہم پڑھیں گے, تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. کتنی بڑی بشارت ہے نا, یعنی جو رفع فسوق اور جدال کے بغیر حج ہوتا ہے وہ حج ایسا ہے کہ اس کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا, اس کی ماں نے آج اس کو جانا, اتنا یعنی اس کا اجر ہے, اتنا وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو اب حج کے کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کچھ سچویشن آ جائے, خاص طور پہ یہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے میدان میں یہ آیت اتری تھی, کیونکہ مسلمانوں کو جیسے ابھی میں نے آپ کو بات بتائی روک لیا گیا تھا نا, تو ان آیات کو ان اس پرسپیکٹو میں ذرا دیکھیے گا کہ مسلمان جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, راستے میں انہوں نے روک دیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اگر تم روک لیے جاؤ تو جو بھی میسر آئے قربانی میں سے قربانی پھر کر دو, یعنی اب آپ نے احرام باندھ لیا, اب احرام باندھ کے چل پڑے, راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, مثال کے طور پہ کیا ہو سکتا ہے, آپ کے پیپرز پورے نہیں تھے, پاسپورٹ ایکسپائرڈ تھا پہلے پتا ہی نہیں تھا, کوئی ایسی پرابلم ہو گئی, جہاز ہی نہیں پہنچا, جہاز کہیں رک گیا, دیکھیں اس طرح سے بھی تو ہوتا ہے, اب میقات پہ آپ نے احرام باندھ لیا ہے, اب کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, یا کوئی خدا نہ خواستہ ایسے بیماری ہو گئی, جب ہم لوگ گئے تھے تو ایک خاتون تھی ہمارے ساتھ جو مکہ پہنچ کے, ابھی حج میں کچھ دن باقی تھے, مکہ پہنچ کے وہ ایسی بیمار ہوئی, ہاسپٹلائز ہو گئی, وہ حج نہیں کر سکی, وہیں سے واپس بھیج دیا گیا ان کو. دیکھیں ایسی سچویشن بھی تو ہو سکتی نا, اب احرام پہن لیا تو اب اگر گھیر لیے جاؤ, گھیر لیے جاؤ کا مطلب یہاں پہ کیا, یعنی اب انہوں نے آپ کو اسٹاپ کر دیا, اب انہوں نے اسٹاپ کر دیا آگے نہیں جانا, تو اب ایسے ہی نہیں احرام سے نکل سکتے کہ چلو جی احرام کی پابندیوں سے نکل آئے. احرام صرف کپڑے کا نام نہیں ہے کہ آپ وہ کپڑے پہن لیتے ہیں تو احرام میں آ گئے, کپڑے اتار دیے تو چلو احرام سے نکل گئے, دوسرے کپڑے پہن لیتے ہیں, وہ نہیں ہے. احرام کچھ ایک ایک یعنی سمجھ لیں ایک حالت ہے, حالت احرام اسی لیے کہتے ہیں, لباس احرام نہیں کہتے, حالت ایک ایسی حالت ہے جس میں کچھ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ دربار شاہی میں جا رہے ہیں, کچھ اس کے ایٹیکیٹس ہیں, کچھ طریقے ہیں, ایسے ہی نہیں آپ نے احرام جب مرضی پہنا جب مرضی اتار کے چلو جی اب ہمیں تو جانے نہیں دے رہے, کیا کریں مجبوری, اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا, ہم تو نیت سے نکلے تھے تو پھر کیا ہوا, اب چلو جی اتار دیا, نہیں نہیں ایسے نہیں کر سکتے. اب کیا ہوگا, اب آپ کو قربانی دینی ہوگی, قربانی کیا ہے, ایک گائے بکری یا ایک اونٹ ہے یا جو بھی میسر ہو کسی کو آسانی سے جو بھی کر سکتا ہے, تو وہ ایک قربانی دے دیں. اور ولا تحلقوا رؤوسکم, اور نہ تم شیو کرو اپنے سروں کو, حتی یبلغ الہدی محلہ, جب تک کہ وہ قربانی محلہ تک نہیں پہنچ جائے, حلال گاہ تک نہیں پہنچ جائے. یعنی اب یہ قربانی بعض علماء کہتے ہیں اب یہ فقہی مسائل ہیں, تھوڑے سے ان مسائل کو تھوڑا سا سمجھ لیں تھوڑے سے صبر کے ساتھ, جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کے لیے تو زیادہ سمجھنے آسان ہوں گے, جو نہیں گئے تو کوئی مسئلہ نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو لے کر جائے, تو ان کے لیے تھوڑے سے مشکل ہوں گے, لیکن پھر بھی تھوڑے جتنا حد تک آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو مینا میں کیا کرتے ہیں, رمی کرتے ہیں جو جمعرات پہ ہوتی ہے, جو کنکر مارتے ہیں, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, بال کاٹتے ہیں, عورتیں تو بال تھوڑا سا کاٹتی ہیں اور مرد شیو کراتے ہیں سر کو, اس کے سوری پہلے قربانی کرتے ہیں پھر اس کے بعد شیو کراتے ہیں سر کو, تو اس کے بعد آپ احرام کی حالت سے پارشلی نکل جاتے ہیں, وہ کہ طواف افادہ بعد میں کرنا ہوتا ہے لیکن پارشلی آپ احرام کی حالت سے نکل جاتے ہیں, تو سر شیو کرانا کیا ہوتا ہے, احرام کی حالت سے نکلنا. تو اب کیا ہے, آپ اپنے سر شیو نہیں کراؤ گے جب تک کہ یہ قربانی جو آپ نے دینی تھی وہ اپنی حلال گاہ تک نہ پہنچ جائے. اب کون سی یہ حلال گاہ کہاں پہ پہنچانی ہے, بعض امام ابو حنیفہ کا جیسے خیال ہے کہ حرم تک قربانی پہنچنی چاہیے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں جہاں پہ روک دیا گیا وہیں پہ قربانی کر دو, لیکن زیادہ یہی ہے کہ حرم تک پہنچے. تو اب یہ ہے آپ اس وقت تک سمپل بات کو سمجھیں, روک دیے گئے ٹھیک ہے ایک جگہ پہ, آپ کیا कुर्बानी देनी है। अब कुर्बानी या तो खुद लेके जाते, खुद तो लेके जा नहीं सकते, किसी के हाथ भेज दें या वहां पे किसी को कह दें कुर्बानी कर दे, दम जिसको कहते हैं दम देना, तो दम दे दो वहां पे। अब क्या है वहां पे कुर्बानी का, उस जमाने में तो खैर पता ही नहीं चलता था कि भाई हुई या नहीं, तो एक गैस करते थे कि भाई पहुंच गई होगी। अब तो पता चल सकता है कि भाई वहां पे पहुंच गई, कुर्बानी हो गई है, तो उसके बाद फिर सर शेव कराएं, फिर अहराम से निकलेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा, यहां तक इसको ब्रैकेट कर लें, यहां से लेके फाइन और सिरतुम से लेके पेंसिल से महिला तक ब्रैकेट एक बना लें, ठीक है, ये एक मसला खत्म हो गया। अच्छा, अब हो सकता है एक बात ये भी तो सोचे, किसी इतने दिन लगे वहां पे कुर्बानी होने में, इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ऐसा बीमार हो जाता है, किसी के सर में ऐसी चोट लग जाती है, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि उसको सर पहले शेव कराना पड़े, फिर क्या करेगा? क्या ऐसा हो सकता है? कोई उसके लिए हल है? लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस भी तो हो सकता है ना, एक बंदा है वेट कर रहा है, ठीक है कुर्बानी वहां पे हुई, उसने अपना सर शेव करा दिया, सर शेव कराना भी ऑप्शन है और बाल कटवाना भी है मर्दों के लिए। लेकिन याद रखें, शेव कराने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह सर मुंडवाने वालों पर रहम फरमा। सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह बाल कुतरवाने वालों के लिए भी दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला सर मुंडवाने वालों पर रहमत फरमाए। सहाबा ने फिर कहा या रसूल अल्लाह आप सर कुतर बाल कुतरवाने वालों के ऊपर भी के लिए भी उनके लिए भी दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी दफा उनके लिए दुआ की, और पहले उनके लिए ही दुआ की जो सर मुंडवाने वाले थे। तीसरी दफा जब उन्होंने फरमाया ना सहाबा ने, तो तब दुआ की थी। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि तीन बार उनके लिए दुआ की जो सर शेव कराते हैं, यानी ये भी तो बाल हैं, ये भी अल्लाह के रास्ते में, अगर इतनी भी नहीं इंसान कुर्बानी दे सके तो फिर क्या है? इंसान उस वक्त ये दिखाता है कि ये भी एक इज्जत की, एक बड़ी इंसान की शक्ल उससे बिल्कुल एक डिफरेंट ही हो जाती है जब इंसान सर मुंडवाता है, तो क्या मैं अल्लाह के लिए ये दे सकता हूँ या नहीं? भी इंसान एक सबूत देता है ना इस चीज का कि ये मेरी यानी रिस्पेक्ट प्राइड ये वो जो भी है बाल हैं, तो क्या मैं कुर्बानी कर सकता हूं ऐसी? तो ये एक बात हो गई, ठीक है। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई भी। लेकिन आगे मैंने आपको सिनेरियो क्या बताया, किसी के मसलन जुए पड़ जाती हैं सारे, क्योंकि ऐसा एक वाक्य हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। उस वक्त एक सहाबी ऐसे थे, जाहिर है वो कंगियां भी नहीं कर रहे, गुसल भी नहीं कर रहे, इस वजह से बाल ना टूट जाए या कुछ है, तो अब वो इतनी जुए पड़ गए कि जुए ऊपर आने लगी मुंह पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या एक बकरी भी नहीं मुयस्सर तुम्हें कि तुम एक कुर्बानी कर दो? यानी फिर क्या ऐसा एक्सेप्शनल केस अगर आ जाए कि किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो गई है या कोई ऐसी तकलीफ हो गई है कि उसको जल्दी अपना सर शेव कराना पड़ रहा है, उसको बाल कटवाने पड़ रहे हैं और एहराम से उसको निकलना है, तो फिर क्या करें? तो उसका आगे है फमन काना मिनकुम मरीदन औ बिही अदन, क्या अगर कोई मरीज है या उसके सर में अदन में रासी भी, उसके सर में कोई तकलीफ हो, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा जख्म हो गया, अब उनको बाल थोड़े से शेव करने पड़ते हैं ना वहां पे पट्टी करने के लिए कोई, तो फिर क्या करें? फिदिया, तो उसका भी हल है, फिदिया दे दें। फिदिया क्या है? मिन सियामिन, रोजे रख ले या औ सदका दिन, या सदका दे दे औ नुसुक या कुर्बानी कर दे, इन तीनों में से एक करें। अब यहाँ पे बताया नहीं गया कितने रोजे और कितना सदका, लेकिन हदीस में आता है तीन रोजे रख ले या छह मिसकीनों को खाना खिला दे, ये सदका हो गया, या फिर कुर्बानी दे दे एक बकरी, ठीक है। इससे क्या पता चले? एक बात बताएं कि क्या आपको समझ आई इससे? ठीक है, वो तो आयत अपनी जगह है, इसका मतलब है आप अपनी चाहत से अपनी मर्जियां नहीं चला सकते हज उम्रे में। तो कितना बड़ा अल्लाह ताला इंसान को ट्रेन करते हैं कि हज उम्रे में इंसान ये सीख लेता है मुझे अपनी मर्जी नहीं चलानी, जैसे अल्लाह का हुक्म है वैसे ही करना है। इवन बाल काटने भी पड़ रहे हैं, तो ये नहीं कि मैं जैसे मर्जी, मेरा मेरे ही बाल है ना, फिर क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है बाद में कटाए के पहले, अगर मजबूरी है मेरी? नहीं नहीं नहीं, मजबूरी भी हो तो तुम्हें अल्लाह ही की तरफ रजू करना है कि अब क्या मैं करूं, किस तरह मेरा तरीका कार होगा। हर एक चीज का सलूशन तो है, लेकिन रहनुमाई किससे ली? अल्लाह ताला से। ये है लर्निंग, इंसान यहाँ हज पे जाके ये लर्न करता है कि पूरी लाइफ में मैंने अपनी मर्जी नहीं करनी, अल्लाह की मर्जी से चलना। पूरी लाइफ में मैंने गाइडेंस अल्लाह ताला से लेनी, जहां पे मुझे कोई मसला हो गया अब क्या करूं। देखा नहीं आपने कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं वहां पे, लोग इतने बेचारे परेशान होते हैं, हाय कोई चीज गलत ना हो जाए, हाय हमारा हज ना खराब हो जाए, ना ये इसमें क्या करें उसमें क्या करें, तो इतनी उनको परेशानी होती है ना। तो क्या जिंदगी में भी, बाकी जिंदगी में भी इंसान इसी तरह फिक्रमंद रहता है कि हाय मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, मैं जल्दी से जाके पूछूं इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। पूरा हज हमें यही लेसन दे रहा है, जिंदगी में भी ऐसे ही चलना, वापस जाके भूल ना जाना, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सिनेरियो हो गया कि अगर इंसान रोक लिया गया है या वो बीमार हो गया है, उसको अपने सर के बाल जल्दी कटवाने पड़ गए हैं, किसी भी सिचुएशन है, अगर उसको नहीं भी रोका गया, वो आगे भी चला गया, लेकिन उसको अपने बाल जल्दी कराने पड़ रहे हैं, तो अब क्या है उसके लिए, फिर उसको फिदिया देना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे केस देखें, यहां तक एक ब्रैकेट कर लें, मन काना से लेके नुसुक तक, ये एक सिनेरियो खत्म हो गया। अब एक थर्ड सिचुएशन है, देखें कोई आपको घेरा नहीं गया, कुछ नहीं है, आप आराम से अपने हज पे गए हैं, या फिर अगर पहले रोका भी गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुश्किल खत्म हो गई, अब अमन हो गया, ठीक है। अमन हो गया यानी अब अमन का मतलब क्या है, आप आराम से चले गए हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग जाते हैं, तो फाइदा अमन तुम, तो जब अमन में आ जाओ यानी अब एवरीथिंग इज ओके। फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज फमस्तैसर मिनल हज, तो जो फायदा उठाए उम्रे का हज तक तो जो मुयस्सर आए कुर्बानी में से। अब इसका मतलब क्या है, एक बात समझ लें कि अरबों में पहले ये होता था कि ये लोग सोचते थे कि हज के साथ कोई बंदा उमरा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो उम्रे की कोई वैल्यू ही नहीं रही, उम्रा आपको अलग करना चाहिए, हज अलग करना चाहिए। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी सहूलत कर दी, क्योंकि इस दीन ने दुनिया में कहाँ कहाँ फैलना था, अब वो लोग जब इतनी इतनी दूर मुसलमान रह रहे होंगे, तो फिर जब वो हज के लिए आया करेंगे तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा कि अलग टाइम फिर उम्रे के लिए आए, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ये सहूलत कर दी कि अब नाउ आप फायदा उठा सकते हैं उम्रे का भी हज के साथ ही, यानी इनको कंबाइन कर सकते हैं, एक ही सफर में आपने उम्रा भी कर लिया और हज भी कर लिया। तो ये तमत्ता है ना, ये तमत्ता वो हज तमत्तो वाला नहीं, ये वैसे है कि ये फायदा उठा लिया ना आपने, क्योंकि आपने सफर तो एक ही किया, एक सफर में एक तीर में दो शिकार, एक सफर में उम्रा भी हो गया और हज भी हो गया। तो जो जिसको अल्लाह ताला ये प्रिविलेज अल्लाह ताला ने एक दे दी ना, समझ लें, तो जिस जो जिनको जो बाहर रहते हैं, जो दूर से आते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये प्रिविलेज दे दी कि वो उम्रा भी कर रहे हैं हज के साथ, तो फिर वो भी एक कुर्बानी करें, जिसको इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ये दमे शुक्र है, यानी एक शुक्राने के तौर पे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें एक ही सफर में ये भी इजाजत दे दी कि हम उम्रा कर सके। इसीलिए आप देखें जो हम वहां पे हज पे जाके कुर्बानी करते हैं ना, जो 10 ज़िलहज को, तो वो यही है कि उस दिन हम ये कुर्बानी करते हैं कि वरना जो तीन तरह के हज होते हैं ना, हज इफराद, हज तमत्तो और हज किरान, जो हज इफराद कर रहे हैं, जो सिर्फ हज करते हैं उनका वो अगर कुर्बानी करें या नहीं करें कोई मसला नहीं, लेकिन हज तमत्तो और हज किरान वाले, यानी जो हज तमत्तो में भी आप हज और उम्रा एक ही सफर में करते हैं और हज किरान में भी, तो उन दोनों के ऊपर तो कुर्बानी जरूरी है, क्योंकि वो उम्रा भी साथ कर रहे हैं। मन लम यजिद, तो जो कोई ना पाए, क्या ना पाए, किसकी बात अभी हुई है, हदी ना पाए यानी कुर्बानी ना पाए, उसको इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता बेचारा, उसके पास नहीं इतने पैसे, हज को मुश्किल से गया, अब कुर्बानी किधर से करे। फसयामु सलासती अय्याम, तो अब क्या करें, रोजे रख लें, कितने रोजे रखे, सलासती अय्याम फिल हज, तीन रोजे रखे हज में, तीन रोजे रखे हज में, कौन से दिनों में, यानी फर्स्ट से लेके नाइन्थ के दरमियान तक, 9-10 को तो रखते ही नहीं है ना, 10 को तो वैसे ही ईद होती है, तो इन तीन रोजे इन दिनों में रख लें। और कुछ लोग कुछ फिक्री मसाइल देखें इसके अंदर है, आपको हो सकता है किसी बुक में ये भी मिले कि 9th को भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये तो वो दूसरी तरह का रोजा है ना, जिसमें कि ये हद ही नहीं मिली तो इसलिए उसको रखना पड़ा, वरना वैसे हाजी हज के लिए जाते हैं तो उनको 9th को नहीं रोजा रखना होता। तो फसयामु सलासती अय्यामिन फिल हज, तीन रोजे हज में और सबातिन इज़ा रजअतुम, और 7 रोजे जब वो वापस आ जाए, जब वापस यानी हज से वापस आ जाए अपने कंट्री में, तिल का आशरा तुम पाओ मेरा, ये 10 हो गए पूरे, ठीक है 10 हो गए ना, समझ आई? तीन पहले रख लियो और सात बाद में रख लिए, चाहे अपने मुल्क लौट के या वहीं पे, कई कोई लोग महीनों महीनों वहां रहते हैं तो वहां पे रख लिए। लेकिन ये किसके लिए, ये किस बंदे के लिए ये प्रिविलेज? ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام, ये उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम में नहीं है। इसके नीचे लिख ले नॉन रेजिडेंट, नॉन मक्कन, ये लिख लेंगे, यानी जो मक्की लोग नहीं है, जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने ये सहूलत दे दी है। लोकल्स के लिए नहीं है, लोकल्स अलग ही हज और उमरा करें। ये किसके लिए है? ये उनके लिए, जैसे अब हम लोग यहाँ से जाते हैं या जैसे और पाकिस्तान से लोग गए या और जगहों से लोग गए, वो फिर एक सफर में उमरा और हज कर लें और फिर वो अगर उनको नहीं कुर्बानी के उनके पास पैसे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रोजे रख के और फिर वो कर सकते हैं ना। वत्तकुल्लाह, देखिए अब इसमें भी क्या है, डरो अल्लाह से, यहाँ पे भी तकवा चाहिए। आखिर में अगेन वही मैसेज है, वालम अल्लाह शदीद अलिकाब, जान लो अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला। ये क्यों बात आई यहाँ पे? यानी अगर हज के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई तो सवाब की बजाय सजा भी हो सकती। कितनी ये बात है ना, ये ऐसे नहीं है कि अपने तौर पे ही जो मर्जी करें और कोई हदूद का ख्याल ही ना रखें और अपना ही जेन सोच सोच के जैसे समझ में आती वैसे करें, ठीक है? वो नहीं हो सकता। इसमें الحج اشهر معلومات, हज के महीने जो हैं वो اشهر معلومات है, यानी वो नोन है, नोन टू एवरीबॉडी, हर एक को मालूम है। मालूमात का मतलब क्या? मालूम है सबको वो कौन कौन से महीने हैं। शव्वाल का महीना, ज़िलक़ादा का महीना और ज़िलहज का महीना, ज़िलहज के फर्स्ट 10 डेज, उसमें तो हज ही हो जाता है ना फिर स्टार्ट। तो ये महीने हैं जिनमें हज का एहराम बांधा जा सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं रजब से बांध के बैठ जाऊं हज का एहराम और मैं अभी से बांध के बैठी हूँ, नहीं, मैं आज से ही बांध लूं हज का एहराम, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। एटलीस्ट जब जिसने बांधना हो शव्वाल से बांध सकता है। अच्छा, अब ये अहम बात है, बहुत जरूरी बात, जो हज पे जाने वाले लोग, इरादा रखने वाले लोग, उनके लिए। फमन फरद फीहिन्ना, तो जो कोई फर्ज करे उनमें, फर्ज करे उनमें का क्या मतलब है? फर्ज तो अल्लाह ने किया है तो वो अपने ऊपर कैसे फर्ज कर लेते हैं? यानी उन्होंने एहराम बांध लिया ना, उन्होंने नियत कर ली, तो अब उन्होंने अपने ऊपर फर्ज ही कर लिया ना। तो जो अपने ऊपर लाजिम कर ले, यानी एहराम बांध ले, उसने नियत कर ली है, तो अब क्या है उसके ऊपर? 3 रिस्ट्रिक्शन है, वेरी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन। वो कौन सी है? फला रफता। अच्छा, हमें ये सारों को पता है कि जो है ना छोटी छोटी बारीक बातों का पता है, मगर इन टोटेलिटी हम चीजों को नहीं देखते। अब यहाँ पे आप बहुत ब्रॉड उसमें देखें, फला रफत है। औरतों के साथ मैंने कहा मर्द औरत का जो ताल्लुक होता है उसकी तरफ इशारा है, मगर इसमें माइन्यूट हद तक भी जो ताल्लुक हो सकता है ना वो भी प्रोहिबिटेड है, वो भी मना है, ठीक है? यानी आप ये देख लें कि इशारों से भी कोई बात नहीं दूसरे को कह सकता, दबी जुबान में भी नहीं जिक्र कर सकता इस ताल्लुक के बारे में कि बाद में ऐसे होगा या हम ऐसे या जो भी, या छेड़छाड़ करना या टच करना या केस करना या सब चीजें इसमें बिल्कुल ममनू है। फला रफाता, बिल्कुल नहीं इसमें अलाउड। वला फसूका, और ना ही कोई फिस्क की बात, कोई भी गुनाह की बात, उसमें गीबत भी आ गई, चुगली आ गई, उसमें करप्शन और आ गई उसमें, और कोई भी अल्लाह की नाफरमानी का काम। अब उसमें जाहिर है उस टाइम पे एहराम की हालत में शिकार करना भी मना है, बाल काटना भी मना है, नाखून काटना भी मना है, ये सब चीजें मना है ना एहराम की हालत में, तो ये भी फिर गुनाह ही हो गए उस वक्त, हर तरह की नाफरमानी का काम। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला हमें कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, रिस्ट्रिक्शन में रह के इंसान कैसे चले, कि हर वक्त उसको याद रहे कि भाई देखा लोगों को इतनी इतनी बात का वो ख्याल रहता है, भाई मेरा बाल ना टूट जाए, बाल ना टूट जाए, उसके लिए वो इतना एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे भी जाके काम करते हैं, ऐसे हिजाब और ऐसी चीजें करते हैं कि जिनसे बस बाल ना टूटे, कितनी एक एक बारीक बारीक चीज का ख्याल रखते हैं। तो जिंदगी के अंदर फिर बाकी जिंदगी में जब हज से आ जाते तो फिर हाथी भी निगल जाते, फिर कुछ ख्याल ही नहीं। हज तो देखो हमें कैसा लेसन दे रहा है, तो वला फुसूका फिस्क नहीं करना, वला जिदाला और झगड़ा नहीं, नो आर्ग्यूमेंट। और मियां बीवी में सबसे ज्यादा वहीं जाके झगड़े होते हैं, कोई गालम गलोच नहीं, कोई एक दूसरे के साथ बदतमीजियां नहीं। और आप देखें वहां पे इतना हजूम होता है, अब जाहिर है इतना रश होगा तो किसी ने किसी के पैर के ऊपर पैर दे दिया, किसी ने व्हील चेयर चढ़ा दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने धक्का मार दिया। अब लोग वहां पे तूतू मैं शुरू हो जाते हैं, कहीं खाने के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं कि ये खाना हमें ऐसा मिल गया और ये हो गया है, कहीं पे किसी की जूतियां गुम हो गई तो वो वहां पे बोल रहा है और लड़ रहा है, किसी ने किसी की जगह ले ली तो वो वहां पे एक तूफान बदतमीजी होता है। फिर आप देख लें कि वहां पे जाहिर है सफे बहुत टाइटली यानी वो लोग बैठे होते हैं, तो अगर कोई बैठने की वहां पे जुर्रत कर ले तो फिर उसके साथ किस तरह की बदतमीजियों का वो होता है। और हरम के अंदर मैंने देखा, यानी खाना काबा के सामने ये काम हो रहे होते, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, उनको इतनी बस बात पता होती है खुशबू वाला साबन ही इस्तेमाल करना, बाल ना टूट जाए मेरा। लेकिन जो बदतमीजियां कर रहे हो, जो एक दूसरे के साथ बाथरूम्स के वहां पे कितनी लड़ाई झगड़े खड़े होते हैं वहां पे, कितना एक दूसरे को तूफान मचा होता है वहां पे, और कितना बदतमीजियां हो रही थी वहां पे, तो हम उसकी जो असल स्पिरिट है ना वो ही भूल जाते हैं कि ये सब चीजों से अल्लाह ताला ने दूर करके एक तरह से बता दिया है कि नहीं, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ो, बस अल्लाह की तरफ अपना ध्यान रखो। देखिए तकवा की बात भी बार बार आ रही है ना, हज में इंसान कितना सीखता है कि दुनिया को भुला देता है हज और आखिरत को याद दिला देता है, कि इंसान ने अपना जैसे कफन पहना हुआ है और हशर के मैदान वाला मंजर है वहां पे, इतनी मखलूक है और हाथ उठाए हुए ऊपर और अल्लाह से मांग रहे हैं, तो देखिए क्या मनाजिर है वहां के, किस हालत में है इंसान। तो वहां पे तो अल्लाह की तरफ ध्यान होना चाहिए, ना कि इंसान बस इन्हीं चीजों में पड़ा रहे। और अल्लाह ताला ने तो देखे ये मियां बीवी के हलाल ताल्लुक को भी मना फरमा दी ताकि इंसान का ध्यान इस तरफ भी ना जाए, एक हलाल चीज को भी उस वक्त हराम कर दिया गया ताकि इंसान को ये याद रहे कि बाकी दिनों में भी मैं ये इस लस्ट के लिए नहीं इंसान जिंदा रहता, जो मोमिन है वो इस लस्ट के लिए नहीं जीता कि उसके जहन में बस यही ख्याल हर वक्त रहे। हाँ ये एक जरूरत हो सकती है, मगर ये ऐसा नहीं है कि इंसान के जहन पे ये सवार रहे। तुम्हारा मकसद कुछ और है, अपने मकसद पे तवज्जो दो। तो ये पाबंदियां भी इंसान को ट्रेन करती हैं, इन दिनों में इन कामों को छोड़ेगा तो फिर वापस जाके भी उसको ये याद रहे कि मैंने इन फसूक और जिदाल से दूर रहना है। ये कितना अपने आप के ऊपर इंसान को सब्र और कंट्रोल चाहिए कि इतने हजूम में कोई मेरी मर्जी के खिलाफ बात हो जाए तो मैंने चूं भी नहीं करनी, मैंने किसी को कोई बात नहीं कहनी, किसी को ताना नहीं देना, मैंने किसी से बदतमीजी नहीं करनी, मैंने किसी को धक्का नहीं मारना, किसी ने मुझे धक्का दिया तो मैंने जवाब में धक्का नहीं दे देना। तो ये ऐसी जगह जहां पे कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते। देखिए रोजे में भी तो अल्लाह ताला ने यही सिखाया ना कि कोई झगड़ा करे तो उसको कह दो कि नहीं मैं रोजे से हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी कोई झगड़ा करे तो आपने आगे से जवाब नहीं देना, उसको याद कराना है कि हम हज में। वमा तफालू मिन खैरिन यअलमुल्लाह, जो भी तुम खैर करोगे भलाई करोगे, ये काम नहीं करने तो करना क्या है फिर, नेकी के काम, नेकी के कामों की तरफ तवज्जो करो। जो तुम नेकी करोगे वहां पे अल्लाह उसको जान रहा है, अल्लाह जान लेगा, अल्लाह को पता है उसका। यानी अब आपको जरूरत नहीं है लोगों को बताने की कि पता है मैंने तो इतने नवाफिल पढ़े, मैंने तो इतने तवाफ कर लिए, मैंने तो ऐसे किया, मैंने वो किया, या वापस आके बताएं। बार लोग हर वक्त अपनी नेकी का ढंडोरा पीटते रहते हैं, तो ये याद रखें जो तुम करोगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया, चाहे हज में चाहे हज से अलावा भी अपने घरों में आज या रमजान में या किसी और दिन, याद रखिए आपकी नेकी का अल्लाह को पता चल गया है, वो अलीम है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं है, इश्तिहार देने की जरूरत नहीं, ढंडोरे पीटने की जरूरत नहीं है कि इधर उठाओ उधर उसको बताओ उधर उसको बताओ। ये नेकी जो होती है ना, ये इंसान और अल्लाह के दरमियान एक सीक्रेट है। क्या कोई चाहता है कि मेरी सीक्रेट रिवील हो, लोगों को पता चले? नहीं ना। तो ये सीक्रेट है, इसको सीक्रेट ही रखा जाए तो तुम इंतहाई राजदारी से भी कोई काम करोगे ना तो अल्लाह को तो पता है, तो फिर क्या जरूरत है कि हर जगह बताने की। लेकिन हमारी अक्सर ज्यादा हमारी इंटरेस्ट उन कामों में होता है जिसका लोगों को पता चले, उन कामों में इंटरेस्ट कम होता है जिनका किसी को भी नहीं पता चलना, उन पे हमारी जरा तवज्जो जरा हल्की ही होती है, क्योंकि पता ही नहीं चलना किसी को तो क्या फायदा। अब फिर उनका तो यही हो सकता है कि मैं या तो खुद ही मुंह से बताऊं लोगों को, तो अब बताने का तरीका क्या है कि बस बातों बातों में किसी तरह बता दे, मैंने इस तरह किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, तो किसके लिए किया? वाकई अल्लाह के लिए किया तो उसको तो पता है, फिर आप क्यों बयान कर रहे हैं? तो ये नेकी इससे जाया हो सकती है, इसलिए इस चीज को कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर अपनी आदत भी है तो इसको यानी इस पे काबू पाए। तो भलाई वहां पे क्या हो सकती है? देखें भलाई तो जाहिर है हाजियों के काम आ जाना, किसी को सामान उठा लेना, किसी का और हेल्प कर देना, नवाफिल पढ़ना, कुरान पढ़ना, तवाफ करना, ये सब नेकी का काम है। लेकिन ये भी नेकी है कि अगर हम फिस्क ना करें, जिदाल ना करें, ये भी नेकी है। गुस्से को पी जाना ये नेकी है। सब्र कर लेना ये भी नेकी है। कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है उस वक्त, वो उस वक्त अपने आप को काबू में रखना ये भी नेकी है। तो इस नेकी का भी अल्लाह को पता है। وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, سن لیں اب دوبارہ تقوی کی بات آ گئی, تم زیادہ راہ لے لیا کرو, سامان راستے کا لے لیا کرو۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا, یمن کے لوگ آتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں, ہم تو نہیں کوئی زیادہ راہ لے کے جائیں گے, ایسے خالم کھلی آ جاتے تھے, پھر وہاں پہ آ کے لوگوں سے بھیک مانگتے تھے کہ ابھی ہمیں کچھ دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, آپ اپنے ساتھ اپنا سامان لے کر جاؤ۔ اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم وہاں پہ پیمنٹ ویسے ہی کر دیتے ہیں, وہاں پہ کھانا مل جاتا ہے تو ساتھ کھانا لے جانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی, مگر ہم خوب شاپنگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ, تو ہم اتنا سامان لے کر جائیں کہ بس کوئی چیز کی کمی نہ رہے۔ لیکن ایک سامان لے جانا بھول ہی جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیسٹ سامان ہے, جو بیسٹ زیادہ راہ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, وہ ہے تقویٰ, وہ کسی سٹور سے نہیں ملتا, کسی مال سے نہیں ملتا, اسی لیے ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہ ہم نے یہ بھی لینا۔ تو تقویٰ کی پونجی ساتھ رکھا کرو۔ ہم اپنی جسمانی سامان تو, جسم کی راحت کا سامان تو لے جاتے ہیں, لیکن دیکھیں یہ جو دل میں ہے نا, دل کو بھی تو ٹٹول کے دیکھ لیں۔ احرام باندھتے وقت, گھر سے نکلتے وقت چیک کر لیں تقویٰ لیا ہے میں نے ساتھ۔ جیسے اپنا قیمتی سامان آپ ساتھ ساتھ رکھتی ہیں نا, کہیں گم نہ ہو جائے, پاسپورٹ وغیرہ, ٹکٹ وغیرہ ساتھ رکھتی ہیں, تقویٰ بھی ساتھ رکھیں۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو, تقویٰ اختیار کرو۔ تکرار ہے تقویٰ کی, اصل روح ہی تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ نکل گیا تو عبادت بے جان ہے, مردہ ہے۔ عبادت کی لائف جو ہے نا وہ تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب وہاں جا کے بھی ہم متقی رہیں, ہاں وہاں پہ بھی متقی رہنا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اچھا یہ اب آیت کس لیے آئی ہے؟ کہ جب اسلام آیا نا, تو اسلام سے پہلے تو وہاں پہ حج وغیرہ پہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بہت تجارت ہوتی تھی, ظاہر ہے بازار لگتے, لوگ آتے خرید و فروخت کرتے, کوئی چیزیں لے کر آتا وہ بیچتا تھا وہاں سے, یہاں سے چیزیں خرید کے اپنے ملکوں میں لے جاتے, تو ٹریڈنگ ہوتی تھی۔ تو جب اسلام آیا تو لوگوں نے سوچا یہ تو گناہ کا کام ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے حج تو کوئی تجارت کا سفر تو نہیں ہے, اب ہم مطلب اس میں تو تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ تم تجارت کرو, لیکن کوئی حرج نہیں, اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ اس کے ذہن پہ یہی تجارت ہی نہ سوار رہے, پھر وہ وہاں پہ کرنے کیا جا رہا ہے, حج۔ یہ نہیں کہ تجارت کرنے جا رہی ہوں حج بھی ساتھ ہی کر لوں گی, حج کرنے جا رہی ہوں ساتھ تجارت کر لوں گی, یہ ہو سکتا ہے۔ क्या, तो वहां पे भी जाके अगर कोई किसी कुछ मजदूरी भी छोटी मोटी कर ले ना, तो उससे कुछ 4 पैसे उसको मिल जाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। फ़ाइदा फ़त्तुम मिन अरफ़ात फ़ज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, जब तुम पलटो अरफात से। अब मैंने आपको बताया था अफत तुम का, मैं आपको मीनिंग बताऊंगी कि यानी जैसे होता है ना कि यानी कोई चीज इतनी फुल हो जाए कि वो निकल के बाहर गिर जाए, तो अरफा जो है सुबहान अल्लाह, क्योंकि सबने वहां पे जाना होता है, जो योम अरफा होता है ना, हज है ही अरफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज अरफा है, अगर अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहज को आप अरफात के मैदान में जवाल के बाद ना पहुंचे, मगरिब तक वहां पे ना पहुंचे, आप वहां पे ना रहे, वकूफ अरफा नहीं किया, तो आपका हज नहीं। इसीलिए वो सुबह से ही बसें लेके चल पड़ते हैं, क्योंकि अगर वहां को मिस कर दिया ना, तो इतनी दूर से आने का भी नहीं फायदा, हज हुआ ही, तो वो वहां पे पहुंचना जरूरी है। तो फिर सब वहां पहुंचे होते हैं अरफात के मैदान में, तो जब तुम पलटो वहां से अरफात से, तो फज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो वहां से पलटना क्या होता है कि सारा दिन आप अरफा में, या बेसिकली तो ये होता ही है, आजकल फजर के बाद ही वो मीना से अरफा ले जाते हैं, जिन्होंने हज किया उनको पता होगा, सुबह से बसें जाने शुरू हो जाती हैं और वहां पे जाके फिर पहले से ही लोगों को अरफा में छोड़ आते हैं। लेकिन असल चीज ये होती है कि जुहर और असर जो है मिला के अरफा से बाहर पड़ी जाए, इसीलिए आप देखिए मस्जिद नमरा में पड़ी जाती है, और उसके बाद फिर मैदान अरफात में दाखिल हुआ जाए। तो जब मैदान अरफा में दाखिल होते हैं, तो वहां पे वकूफ अरफा यानी खड़े होके फिर दुआएं मांगनी है, वहां का काम ही क्या है, दुआ दुआ दुआ। देखिए अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह कैसे वो जो हमारी एक रूटीन है ना, हमारा एक लगा बंदा अब यहाँ पे नमाज पढ़नी है, उससे निकाल के अब क्या है, अब यहाँ पे दुआएं करो, बस सारा दिन दुआएं करनी है। हालांकि इतनी हम दूर गए हैं, असर की नमाज अपने वक्त पे भी पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, अपने वक्त में नहीं, पहले से मिला के पढ़ लो, जमा करके जोहर के साथ ही पढ़ ली, वो काम खत्म हो गया, अब मगरिब तक कोई नमाज ही नहीं, बस दुआएं ही करते जाओ यहाँ पे, सुभान अल्लाह। और जिन लोगों को फिर आदत नहीं होती दुआएं मांगने की, अल्लाह ताला से ताल्लुक नहीं होता, फिर उनके लिए वो टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर है वो कहते हैं अब तो हम थक ही गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 घंटे अरफा के मैदान में दुआएं मांगते रहे अपनी उम्मत के लिए, इतने बेचैन हो जाते थे कि कभी वो जो ऊंट की जो जहां पे पैर रखे थे उनके ऊपर यानी ऊंट के ऊपर ही खड़े हो जाते थे और हाथ बुलंद कर देते थे, कभी बैठते थे फिर दुआएं मांगते थे। तो जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ होता है ना, जो पहले से अल्लाह से बातें करता रहता है, तो वहां पे भी जाके उसको कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन जिसका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक ना हो, फिर वो कहते हैं हाय अब कब इमाम साहब आएंगे, अब वो खड़े होके हमें दुआ कराएं तो फिर हम दुआ करें, क्योंकि हमें खुद तो दुआएं भी नहीं मांगनी आती। वो अल्लाह से मांगना तो सीख लो, उससे बात करना तो सीख लो, जो भी नहीं आता वो भी कोई करा देगा तो फिर हमें आ जाएगा, हम उसके पीछे बस आमीन आमीन कहते रहेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि इंसान दुआ मांगना सीख ले। आपको पहले भी बताया था कि वो हमारी एक स्टूडेंट गई है अभी उम्रे पे, तो मुझे अच्छा भी बहुत लगा कि उन्होंने कहा कि आपने जो रमजान में दुआएं कराई हैं, तो हमें वाकई समझ आई कि कितनी दुआएं हैं और कैसी दुआएं हैं जो हमें मांगनी चाहिए, जो हमें पता ही नहीं कि हम ये भी दुआ है कोई जिसको हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। कि हम जाहिर जाहिर की चीजें मांग लेते हैं ना, हम डेप्थ में देखते नहीं कि हमें और भी क्या क्या मांगना है। तो या फिर हम वो किताबें ले जाते हैं, उनका एक थद्दा बनाया होता है, और वो एक के बाद एक किताब निकाल निकाल के उसमें क्या करते हैं, दुआ मांगते हैं कि पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तो पढ़नी नहीं है, पढ़ने और ना मांगने में तो फर्क है ना, दुआ मांगो, अल्लाह को पुकारो, गिड़गड़ाओ, रो वहां पे खड़े रहो। अल्लाह ताला को बड़े प्यारे लगते हैं वो लोग, अल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर फरिश्तों में फखर करता है कि देखो मेरे इन बंदों को, तुम कहते थे ना ये खून बहाएंगे, ये करेंगे, ये देखो मेरे बंदों को, ये कैसे अपने घर छोड़ के आए हुए हैं और यहाँ पे मेरे से कैसे फरियादें कर रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, तुम गवाह रहे ना मैंने इनको माफ कर दिया, तो कितनी बड़ी एक सआदत है। उस वक्त भी हम ये कहें वो बातों में लगे हुए हैं, इससे उससे अब हम थक गए हैं, दुआ मांग मांग के, दुआ पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तो अब हम चलो थोड़ा सो जाएं, आराम कर लें, बात कर लें, कुछ और कर लें, उस वक्त भी हमारा यही हाल होता है। तो पहले से अपना अल्लाह ताला के साथ हम कलामी करने का, अल्लाह से बात करने का, इस लज्जत को पाएं कि अल्लाह से बात करनी क्या होती, फिर वहां पे अकेले हो जाएं और अल्लाह ताला को पुकारें, वो है असल बात। ये नहीं कि अब आप फिर इमामों के पीछे खड़े हुए और फिर अच्छा आप एक के पीछे दुआ मांग ली अब दूसरे के पीछे चले, दूसरे के पीछे मांग ली अब तीसरे, चलो यही हमें खुशी होती है कि चलो हमने उनके पीछे भी मांग ली उनके पीछे भी मांग, तो आपका अपना क्या ताल्लुक है अल्लाह ताला के साथ? अगर आप डायरेक्ट उससे मांग भी नहीं सकते, उसका ही नहीं पता, तो क्या ताल्लुक है? तो जब आप वहां से निकलोगे ना, अब पोर आउट हो रहे हैं, अब लोग इतने फुल हो गए मैदान अरफा में क्योंकि सारी दुनिया वहां पे खड़ी है, तो अब अफत तुम जब उनसे पलटोगे पोर आउट होगे, देखिए पोर इन होते ना पहले जैसे, फिर अब आप बह निकले हैं बाहर, फज़कुरुल्लाह इंदल मशरे हराम, तो जिक्र करो अल्लाह का मशरे हराम के पास। मशरे हराम कहाँ है? मुज़दलिफा में एक पहाड़ है उसका नाम मशरे हराम है, लेकिन फिर उलमा कहते हैं कि फिर पूरी मुज़दलिफा की जो वादी है ना उसी को मशरे हराम करार दे दिया गया कि अब आप कहीं पे भी होंगे सारे अगर एक ही पहाड़ के पास चले जाए तो फिर किस तरह वहां पे तो मसला हो जाएगा कि सब तो नहीं लोग वहां पे एक ही जगह पे जमा हो सकते, तो इसलिए फिर क्या करो मशरे हराम में यानी मुज़दलिफा में कहीं पे भी आप खड़े होके मुज़दलिफा पहुंच के तो वहां पे आप रात क़याम करेंगे, रात को सोएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा से निकल के उसके बाद जब मुज़दलिफा गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे मगरिब और इशा मिला के पढ़ी थी और उसके बाद सो गए थे वहां पे भी। यानी इसीलिए ये कहा गया ना फ़ज़कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह का, इससे मुराद क्या है? मगरिब और इशा वहां पे मिला के पढ़ना। अब आप अरफा से कब निकलते हैं? दोपहर से वहां है, शाम हो गई है, जिस वक्त यानी मगरिब की अजान होती है तो लोग अरफा से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब क्या है, बजाय इसके कि मगरिब पढ़ते हम वहां पे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं अब मगरिब यहाँ पे नहीं पढ़नी, चलो यहाँ से निकलो। अब वहां से आप जब निकलते हैं तो इतना रश होता है, इतना रश होता है कि मुज़दलिफा पहुंचने तक तो मगरिब का टाइम खत्म हो चुका है, चूंटी की रफ्तार से तो जा रहे होते हैं। अब वहां पे क्या करना है? मगरिब और इशा दोनों जमा करनी है। कैसा हमें सिखाया गया, जिस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म है सारी जिंदगी तो मगरिब मगरिब के टाइम पे ही पढ़नी है, वहां पे गए तो अल्लाह ही का हुक्म है कि नहीं मगरिब पढ़ो नहीं, हालांकि वहां पे टाइम भी है, हम वहां पे जगह पे भी हैं, वहां पे वजू का भी इंतजाम है, सब कुछ है, नहीं आपने नहीं पढ़नी, तो अल्लाह जैसे तेरा हुक्म है हम वैसे ही करेंगे। वहां से निकल गए बगैर मगरिब पढ़े, हालांकि कितनी दूर अपने मुल्कों से आए हुए हैं, इतने दिनों के सफर कर करके लोग वहां पे पहुंचे हैं, अल्लाह की खातिर पहुंचे हैं ना, और नमाज ही मिस करती, लेकिन अब मिस नहीं है वो, अब इसी के अंदर अजर है क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। सुभान अल्लाह, तो कितना प्यारा, अल्लाह ताला ने अपनी फरमा बरदारी का जो एक अल्लाह ताला का की मानने का जो एक सबक वहां पे हमें सिखाया है ना हज के दौरान, किसी और चीज में इस तरह से नहीं जिस तरह हज में होता है। बार 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 इंसान की जो एक रूटीन होती है ना, एक आदत बन चुकी है, मगरिब के उधर हमने बस एक्सरसाइज की तरह मगरिब पढ़नी है, इशा भी एक्सरसाइज की तरह एक बार पढ़नी है, उसके अंदर ना कोई ध्यान है ना कुछ है, वो सारी रूटीन तोड़ दी, ये नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं करना, अब इस वक्त ये करो, इस वक्त जैसे कहा वैसे कर लिया, समय ना हुआ था ना का सफर है सारा, सुना मान लिया, सुना मान लिया बस। ना आप देखें पूरे हज में कई ऐसी चीजें हैं कि इंसान को उनकी हिकमतें ही समझ नहीं आती कि ये करने की क्या जरूरत है, अब वो कंकर मारने की जरूरत क्या है, अब सर मुंडवाने की जरूरत क्या है, अब ये सफा मरवा पे भागने की जरूरत क्या है, ठीक है याद है किसी के लिए लेकिन अब हम क्यों भागे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन इंसान क्यों करता है, बस अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है ऐसे करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करके दिखाया हम यही करेंगे। वहां पे आप रात को रहते हैं और उसके बाद फजर पे वहां से मीना के लिए निकल जाते हैं। वज़कुरूहु कमा हदाकुम, और याद करो उसको जैसा कि उसने रहनुमाई की तुम्हारी, यहाँ पे फरमाया ना अल्लाह का जिक्र करो, कैसे करोगे जिक्र, जो तरीका अल्लाह ताला ने सिखाया वैसे ही, ये नहीं कि हम अपने मन माने तरीके करें, इससे क्या पता चलता है, जिक्र के भी वही तरीके एक्सेप्टेड होंगे जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं सिखाए हैं। मैं अपने तौर पे कोई जिक्र के तरीके कर लूं, मसलन लाइटें बंद करके اللہ ہو اللہ ہو کی بس ایک گردان شروع کر دوں. کیا یہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسے کیا تھا صحابہ نے؟ ایسے کیا نہیں کیا تو پھر میں اپنے ہی طور پہ ذکر کا کوئی طریقہ نہیں بنا سکتی. اسی طرح میں کوئی اور طریقے خود ہی ایجاد کر لوں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ذکر کرنے کا, تو نہیں. تمام ہداکم کو آپ نوٹ کریں ذرا, ورنہ کوئی بھی طریقے سے ذکر کرتے رہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی رہنمائی فرمائی ہے, اور جیسے فرمائی ہے اسی طرح کرو. وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اس سے پہلے تم اس بارے میں راہ گم کردہ تھے, تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کس طرح یہ مناسک کرنے ہیں, کس میں کیا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حج تو ہو رہا تھا, لیکن لوگوں کو کئی چیزیں ایڈ انہوں نے کر دی تھیں, کئی اس میں سے نکال دی تھیں, تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا, خود ہی ڈال دی نہیں تھی کئی چیزیں, جیسے مثلا ننگیوں کے طواف کرنا, تالیاں بجانا, یہ اس طرح کی کئی چیزیں کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا, اللہ نے سکھایا تمہیں. اور پھر آخری آیت کس بارے میں, یہ آپ کو پہلے بتا دوں پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ سوچتے تھے ہم بہت, کیونکہ اتنے ہم حرم کے متولی ہیں, ہم کیئر ٹیکرز ہیں کعبہ کے نا, تو ہم تو حرم سے باہر نہیں جائیں گے, کیونکہ عرفہ جو ہے نا, عرفات کا میدان, وہ حرم سے باہر ہے, حرم کی حدود سے باہر ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں تک نہیں جائیں گے, ہم اسے پہلے ہی آ جائیں گے. مزدلفہ اور منا حدود حرم کے اندر ہیں, تو وہ مزدلفہ منا تک تو ان کا ٹھیک تھا, لیکن عرفہ نہیں جاتے تھے. تو ان کو کہا گیا نہیں, کوئی اس میں نسلی برتری نہیں, کوئی یہ نہیں کہ ہم کیئر ٹیکر ہیں وہاں کے, اس لیے ہم تو اتنے اعلیٰ لوگ ہیں, تم سارے لوگ جاؤ تو اس لیے ہم تو نہیں جائیں گے. اس کی وجہ سے نا عرفہ کی ایک اہمیت وہ نہیں رہی تھی, کیونکہ یہ لوگ خود تو جاتے نہیں تھے, باقی لوگوں کو کہتے تھے تم چلے جاؤ, جو ریزیڈنٹس نہیں ہوتے تھے, لوکلز نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم افید من حیث افاد الناس, تم بھی وہیں سے جا کے واپس آؤ گے جہاں سے لوگ آتے ہیں. اوکے, عرفہ سے عرفہ تک جا کے پھر واپس مزدلفہ, پھر واپس منا, تم اسی طرح آؤ گے جیسے لوگ کرتے. بس تغفر اللہ, اور اللہ سے بخشش مانگو. کس بات کی؟ کہ احکام حج میں تم نے خود ہی سے اپنی طرف سے یہ چیز بنا لی ہوئی کہ ہم وہاں تک نہیں جائیں گے. تم اللہ سے معافی مانگو اس کے اوپر. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا اور بہت مہربان. اور استغفار اس چیز کے اوپر بھی کہ دیکھیں انہوں نے جو ایک فخر کی بات بنا لی تھی نا, اس چیز کے اندر بھی ایک فخر کر لیا تھا کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں, تو اس کے اوپر بھی استغفار. اور دوسری بات یہ کہ باقی تمام لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی استغفار کریں, اس لیے کہ آپ دیکھیں ہر عبادت تقریباً ایسی ہے کہ جس میں عبادت کے بعد استغفار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے فرض نماز سے فارغ ہو کے تین دفعہ کیا فرماتے تھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس لیے استغفار کر لینی چاہیے. انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ عبادت کر کے بھی کتنی اس میں کمیاں رہ گئیں, کتنی کوتاہیاں رہ گئیں, کتنا کچھ اس کے اندر تھا جو ہم نے غلط کر دیا. تو اللہ تو اس پہ بھی معاف کر دینا جو اس میں بھی غلطیاں ہوں. کہیں اللہ نہ کرے کوئی فخر کی بات نہ آ گئی ہو, کوئی ایسی بڑائی کی بات نہ آ گئی ہو, تو استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان. تو اب حج کا اینڈ آ رہا ہے, اب سارے مناسک ادا ہو چکے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, اور پھر جب پورے کر چکو تم اپنے حج کے مناسک. کب پورے ہو جاتے ہیں حج کے مناسک؟ ٹینتھ ذی الحج کو پورے ہو جاتے ہیں نا, جب آپ طواف افادہ کر لیتے ہیں. تو اب کیا ہو گیا, حج کے مناسک پورے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, تین دن آپ منا میں رہتے ہیں رائٹ, 11, 12 اور 13 کو. تو اس وقت کیا کرنا ہے پھر, فذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو. کذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا, جیسے تمہیں یاد کرتے ہو اپنے باپ دادا کو یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو. اب یہ کیوں کہا گیا جیسے باپ دادا کو یاد کرتے ہو اس طرح سے, اصل میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ جو 3 ڈیز ہوتے تھے نا, ان میں عرب لوگوں کے اندر, جیسے آج کل ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ کے کیا ہوتا ہے, جب ہم بیٹھتے ہیں کہیں کبھی گپ شپ لگتی ہے, کوئی گیمز پہ بات ہوتی ہے, یا کوئی موویز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, یا وہ بچے کچھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں ہاتھ میں لے کے. تو ان لوگوں کے پاس کیا مشغلہ ہوتا تھا, ان کے پاس نا شاعر ہوتے تھے, پوئٹس ہوتے تھے. جو پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے قبیلے کے اتنے اور اپنے آباؤ اجداد جو پیچھے باپ دادا گزرے ان کی اتنے قصے بیان کرتے تھے، ان کی اتنی کہانیاں کہتے تھے، وہ تو اتنے اسٹرانگ ہوتے تھے، وہ اتنے جنگجو ہوتے تھے، وہ ایسے ہوتے تھے ویسے ہوتے تھے، یعنی بڑائیاں بہت بڑے بڑے زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ اپنے خاندان کی بہت بہت بڑائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ تین دن نا وہ یہی کام کیا کرتے تھے اور اس میں بہت فخر کرتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد کہتے۔ پھر دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا، وہ اپنے قبیلے کے بڑوں کا اور ان کا ذکر کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے اس وقت تم نے، ان تین دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر میں کیا آ جاتا ہے؟ تسبیحات بھی، نوافل بھی، دعائیں بھی کریں، یہ ہے اصل کام کرنے کا۔ اور اسی طرح رمی بھی کرتے ہیں نا آپ ان دنوں میں، تو رمی کرتے وقت بھی کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کیا کہ کنکر مارتے ہیں، تو وہ بھی اس میں مراد ہوگی۔ یعنی حج کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کیا ہے؟ فذکر اللہ، فذکر اللہ، فذکر اللہ، بار بار یہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حج بھی حج وہی ہے جس اکثر آپ نے کیا دیکھا ہے، جب آپ آ جاتے ہیں اور ان تین دنوں میں کیا ہوتا ہے، جو کبھی گئے ہیں حج کے لیے، ان تین دنوں میں بڑا ریلیکس کیا جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کی باتیں، اس کی باتیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے اپنے خاندانوں کی بڑائیاں، کیونکہ سارے ہی وہاں پہ نئے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو تو کسی کا نہیں پتا ہوتا، تو اپنی بڑی بڑی باتیں اور یہ سب کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی وہ جہالت والے کام ہو رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوتا جانے سے پہلے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کرنا کیا ہے۔ ایک آدھ کوئی لیکچر ہو جائے گا حج کے مسئلے مسائل، وہ بتا دیں گے، اس کے بعد پھر وہی ہم کسے کہانیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر حج کی مشکلات کا رونا روتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، منا کے دنوں میں آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ دعا بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ تو دعا میں آگے وہی بات آ رہی ہے دعا کے اوپر۔ فمن الناس، لوگوں میں سے، من یقول، کوئی وہ ہے جو کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، آگے حسنا نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے بس۔ بعض لوگ حج کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو یہی نیت لے کے نکلتے ہیں۔ مثلا آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا، میں حج پہ جا رہی ہوں بس اپنے لیے اولاد مانگنے کے، اللہ کے گھر جا رہی ہوں وہاں جا کے مانگوں گی، میں حج پہ جا رہی ہوں یا عمرے پہ جا رہی ہوں کیا کرنے کے لیے، آئے میرے بچے کو فلاں جگہ ایڈمیشن مل جائے، میرے میاں کو یہ جاب مل جائے، میرے حالات درست ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگتے، اور دعا ہی بتاتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ جب ان کی ساری دعائیں دنیا ہی کے گرد گھومتی ہیں، یہی کی ضروریات، یہی کی خواہشات، انہی کے لیے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، پتا چلتا ہے کہ اندر جو ہے نا بس صرف دنیا بسی ہوئی ہے۔ تو اندر جب دنیا ہی سمائی ہوگی تو زبان پہ بھی اسی کے لیے دعائیں آئیں گی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بڑی دیکھیں ڈرا دینے والی بات ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یاد رکھنا پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے انہوں نے کبھی آخرت مانگی ہی نہیں ہے، صرف دنیا مانگو گے تو دنیا ہی مل جائے گی۔ اگر تم آخرت مانگو گے تو آخرت ملے گی۔ جاہلیت میں تو کیا ہوتا تھا، عرب لوگ کیا کرتے تھے، وہاں جا کے دنیا کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتے، اپنے اونٹوں کے بڑھاوے کے لیے، بکریاں میں بڑھ جائیں ہماری، آئے ہمیں دشمنوں کے اوپر فتح مل جائے، ہم یہ ہو جائے، تو یعنی دنیا کی ان کے لیے چیزیں اہم ہوتی تھی نا، اور آخرت پہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے اپنے مسلمان ہیں، کہیں حج پہ چلے جائیں گے لیکن وہاں جا کے بھی دنیا دل سے نہیں نکلی، وہاں جا کے بھی مقصد یہی ہے کہ دنیا ہی مانگنی، کہیں بزنس میں ترقیاں ہو جائیں، کہیں روزگار مل جائے، کہیں یہ مل جائے۔ اور دیکھیں جاتے کس کے لیے، ہم نے پہلے پڑھا تھا اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، تو اللہ کے لیے نکلنا چاہیے تھا نا، وہ کس کے لیے نکلتے، یہ ہمیں یہ دنیا ہی مل جائے، بس یہ ریزن ہوتا ہے۔ तो फिर ठीक है, दुनिया मिल जाएगी, लेकिन आखिरत ना फिर मांगना। और कुछ ऐसे हैं, कुछ और लोग भी हैं, लेकिन जब इंसान को ना आखिरत की मुश्किलात की समझ आ जाती है ना, आखिरत के दिन की इंटेंसिटी का पता चल जाता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो आखिरत ना मांगे। उसको तो आखिरत की परेशानी इस दुनिया की परेशानियों से ज्यादा बड़ी लगने लगती है, वहां के मसले इतने बड़े लगते हैं, फिर कैसे हो सकता है उसके दिल से आखिरत के लिए दुआई ना निकले। अल्लाह ताला ने फरमाया कुछ ऐसे भी लोग हैं, व मिन हुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं, उनमें से कोई कहता है ए हमारे रब हमें दे दुनिया में भी हसना दे। हसना क्या है? दुनिया की हसना। सुबहान अल्लाह, दुनिया की हसना में सब कुछ आ जाता है, सारी भलाइयां आ जाती। ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है, और इस दुआ में क्या है, हसना, दुनिया की हसना क्या है, दुनिया में आफियत, दुनिया में राहत, दुनिया में आसानी, दुनिया में तंदुरुस्ती, घर बार, बीवी बच्चे, रोजगार, इल्म, अमल, अच्छी सवारियां, नौकर चाकर, इज्जत आबरू, सब ये चीजें आ जाती हैं, और नेकी की तौफीक। अल्लाह नेकी की भी तौफीक दे देना, ये दुनिया की हसना है। और हसना देखें, वही चीज हसना हो सकती है ना जो रब की रजा के साथ मिले, हराम तो हसना नहीं हो सकता ना। तो इसमें हराम से बचने की भी दुआ हो गई कि अल्लाह हराम का रोजगार या हराम की दुनिया मुझे ना देना, क्योंकि वो तो हसना है ही नहीं। वह फिल आखिर होती हसना, और अल्लाह इस बंदे को पता है कि दुनिया ने तो गुजर ही जाना है, उसके बाद है आखिरत का मरहला, तो ऐ अल्लाह मुझे आखिरत की भी भलाई चाहिए, मुझे उसकी भी हसना चाहिए। लेकिन जब आप कुरान से जुड़ते हैं ना, कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो वाकई इंसान को दुनिया के मसले बहुत छोटे लगते हैं और आखिरत के मसले बहुत बड़े लगने लगते हैं। हाँ, कुरान पढ़ने से पहले शायद आखिरत तो भूल ही रहती है, क्योंकि वो जहन में ही नहीं है, इसलिए दुआओं में भी सबसे पहले दुआ शुरू ही होती है, तो अल्लाह ये फलाने को सेहत मिल जाए, फलाने को ये मिल जाए, ये। अब ये दुआ देखो सबको याद है, लेकिन किसी को ये नहीं समझ आती कि हमने जब दुनिया की हसना मांग ली तो क्या कुछ उसमें मांग ली, और आखरत की भी भलाई मांग ली, तो आखरत की हसना क्या है कि अल्लाह ताला वहां पे हिसाब किताब में आसानी हो जाए, वहां पे घबराहट से निजात मिल जाए, नामा आमाल दाएं हाथ में पकड़ा दिया जाए, अल्लाह इज्जत के साथ हमें जन्नत में दाखिल कर देना, अल्लाह अपना दीदार करा देना, ये सब वहां की हसना है, वहां की भलाइयां है ना। और वकीना अजाब अन्नार, अल्लाह आग के अजाब से बचा लेना, इसलिए कि इसको पता है कि आग का अजाब कितना शदीद है। अल्लाह ताला देखो हमें कितनी प्यारी दुआएं खुद सिखाता है, यानी इसमें देखें जब आपने ये मांग लिया ना आखरत की भी हसना और आग के अजाने का, कि अल्लाह सारी बचा लेना मुझे, क्योंकि गुनाहों से बचेंगे तो आग से बचेंगे ना, गुनाहों से बचेंगे तो फिर आखरत की हसना मिलेगी ना और जन्नत मिलेगी ना। और आखरत की हसना में सिर्फ जन्नत नहीं है, उस दिन की जो भी, यानी आखरत इंसान की कब से शुरू हो जाती है, मौत के साथ ही आखरत शुरू हो गई, उसके बाद के जितने मरहले हैं अल्लाह सब की भलाइयां, तो जाहिर है उसके बाद सब चीजों में आसानी कैसे मिलेगी जब इंसान की ये दुनिया में जाहिर है वो एक नेकी के रास्ते पर चलेगा, गुनाहों से बचेगा, हिदायत उसको मिल जाएगी, तो फिर ही में आखरत अच्छी होगी ना। इनडायरेक्टली उसने ये सारा ही कुछ मांग लिया, अब दुनिया में भी गुनाहों से बचने लगा वो, अल्लाह ने उसके लिए ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि हराम से बच सके, अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि नेकियों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए कि उसको नेकियों के तौर सके वो। दुआ में, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि दुनिया मांगना कुछ बुरा नहीं है, हमें दुनिया भी मांगनी है, उसकी हसना भी मांगनी है, क्योंकि अगर दुनिया की हसना नहीं है तो फिर आखरत भी कैसे संवरेगी, तो दुनिया की हसना भी मांगनी है। और इससे हमें ये भी पता चला कि देखें कभी इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल आता है, जब आखरत की इतने मसले मसाइल हम सुनते हैं तो ये ख्याल आता है, या अल्लाह बस, कभी आपके आया दिल में ऐसे कि अल्लाह पता नहीं यहीं पे अल्लाह जो भी सजा मुझे देनी है ना यहीं पे मिल जाए, बस वहां की सजाओं से बचा लेना, वो नहीं हम सह सकते। कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए, ना कभी ऐसा सोचना चाहिए, इसलिए کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک مسلمان بیمار ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے, دیکھا کہ وہ بالکل اتنے دبلے پتلے ہو گئے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, کیا تم کوئی دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ انہوں نے کہا, ہاں میری یہی دعا ہوتی ہے, اللہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے نا اللہ دنیا میں ہی دے دے. جیسے انسان کے دل میں آتا ہے نا, اللہ وہاں کے تو نہیں ہم سہ سکتی, تو دنیا میں ہی مجھے دے دے, میں وہاں پہ جا کے مجھے کوئی عذاب نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبحان اللہ, کسی میں اس کی برداشت کی طاقت ہے کوئی؟ یعنی کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب تو ہم دنیا میں بھی نہیں برداشت کر سکتے. تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی, ربنا آتنا فی الدنیا, یہ والی جو ہے, یہ کیوں نہیں مانگی؟ چنانچہ اس بیمار نے اب سے اسی دعا کو مانگنا شروع کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اس دعا کو آپ شفا کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں, کہ اللہ مجھے دنیا کی حسنہ دے دے, مجھے آخرت کی بھی حسنہ دے دے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بہت جامع دعا ہے. اور ویسے تو طواف کرتے وقت کی کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو اسپیشل کہی گئی ہو کہ یہ دعا مانگنی چاہیے, آپ کوئی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پہ آپ نے دیکھا نا, رکن یمانی جو وہاں پہ گئے ان کو پتا ہوگا, رکن یمانی ایک طرف ہجر اسود ہے, ہجر اسود سے پہلے جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو کارنر آتا ہے خانہ کعبہ کا, اس میں رکن یمانی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے رکن یمانی سے لے کے ہجر اسود تک کے درمیان یہ دعا مانگے, یہ یعنی مسنون دعا ہے اس وقت کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ہے کہ رکن نبی حج اور رکن اسود کے درمیان, یعنی جو رکن یمانی اور ہجر اسود کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگا کرتے تھے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی رکن کے پاس سے گزرتا ہوں, یعنی رکن یمانی کے پاس سے گزرتا ہوں, تو دیکھتا ہوں کہ وہاں فرشتہ ہے اور وہ آمین کہہ رہا ہے, تم جب کبھی یہاں سے گزرو تو یہ دعا مانگا کرو. ابن مردویہ کی یہ روایت ہے. تو یہ دعا آیت نمبر 201 میں جو ہے, یہ دعا مانگا کرو. اسی طرح یہ بھی بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے, بہت مانگتے تھے. حضرت انس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو مانگتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ انہوں نے حضرت انس نے جواب دیا کہ یہی دعا, یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. تو حضرت انس خود بھی جب دعا مانگتے تھے تو کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے. ہم لوگ اپنی نمازوں میں جب نماز کا سلام پھیرنے لگتے ہیں, اس سے پہلے بھی سب لوگوں کو, بچے بچے کو یہ دعا یاد ہوتی ہے. لیکن آج یہ کوشش کریے گا, آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس دعا کا ترجمہ کسی ایک بندے کو بتانا ہے, کیونکہ سب کو یہ دعا یاد ہے نا, بچوں کو بتا دیں, کسی ایک کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیا معنی ہے اس کا, اور کیسی بھلائیاں مل سکتی ہیں انسان کو اس دعا کو واقعی مانگنے سے, پڑھنے سے نہیں. ٹھیک ہے, اولائک یہی لوگ ہیں, لہم نصیب مما کسبوا, جن کے لیے ایک حصہ ہے نیکی میں سے, ایک حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا. یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہی مل جائے گا, بلکہ جو تم نے کمائی کی, جس کے لیے تم نے محنت کی, اس کا مطلب ہے کہ محنت کرنی بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ دعا مانگ کے خود بیٹھ جاؤ. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں بس ہم میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا, یعنی بس اللہ ہی کرے, اب میں نے نہیں کوئی کوشش کرنی. نہیں, یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کیوں آپ نے دعا مانگی ہے, آپ نے اس کے اوپر چھوڑا ہے, تو اس کا مطلب آپ کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ نہیں ہے. آپ کسب کریں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حصہ اس میں سے دے گا. اور اس میں یہ بھی ہے, ایک اور معنی بھی ہے اس کا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حصہ مقرر کیا ہے وہ اس میں سے ہے جو تم نے کمائی کی, جو تم نے کسب کیا, جو یعنی تم نے نیکی کی, اس میں سے حصہ ملے گا, اس میں سے. اس لیے کہ انسان کمائی تو بہت کچھ کرتا ہے, یہ کمائیاں ہی ہیں نا ہماری, جو ہمارے عمل ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری کمائی ہے. ٹھیک ہے, مگر کسی عمل میں دیکھیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, استغفر اللہ ربی, کہ کسی عمل میں ریاکاری آ گئی, کسی عمل میں احسان جتا دیا, کسی عمل میں تکبر کر لیا, किसी अमल की क्वालिटी इतनी पुअर है, इतनी पुअर है कि उसकी कोई कोई उसका कोई हैसियत ही नहीं है। तो एक हिस्सा उसमें से जो तुमने अमल किया फिर मिलेगा, जब तुम ये दुआएं करोगे इस तरह से तब तुम्हें मिलेगा। यानी अब डिपेंड करता है ना कि आपका अमल कैसा है, जैसा अमल होगा फिर उसके मुताबिक एक हिस्सा। जरूरी नहीं है कि आपने जो अमल किया 100% उसका आपको अजर मिल जाए, क्योंकि उसमें से इतने परसेंट जो था वो बिल्कुल पुअर था। मसलन आपने नमाज पढ़ी, उसके अंदर आधा टाइम तो हमारा ध्यान ही कहीं और था और आधा टाइम कहीं और था, और फिर हमने कैसे पढ़ी और पता नहीं हमारा वजू ही नहीं सही हुआ था। तो नसीबुन एक हिस्सा, जितनी फिर सही होगी वो कबूल है, फिर बाकी जो है ना वो तो रिजेक्टेड है। जो अमल किया ना उसमें से एक पोर्शन मिल जाएगा अजर का। अल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला बहुत तेज है हिसाब लेने में। यानी अल्लाहु अकबर, आप दुनिया में देखते हैं सुपर कंप्यूटर रखे होते हैं, वो रखे होते हैं, एक की प्रेस करते हैं और सारा प्लस माइनस डेटा सब आपके सामने आ जाता है कैलकुलेशन होके। अल्लाह ताला के पास जो हिसाब किताब है ना, ये तो दुनिया के इंसानों के बनाए हुए कंप्यूटर हैं तो ये हाल है। अल्लाह के पास जो हिसाब किताब है उसका तो ये हाल है कि उसके लिए सारी मखलूक का हिसाब लेना ऐसा है जैसे एक बंदे का हिसाब लेना। उसके लिए इतना आसान है और इतना फास्ट है, यानी उसी वक्त सब कैलकुलेशन सामने आ जाएगी प्लस माइनस होके। ये अमल था, इसमें इसने इन हालात में किया, इसमें इसकी ये नियत थी, इसके इतने नंबर कट गए, इतने नंबर इस वजह से ऐड हो गए, सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होके आगे आ गया। ये नहीं कि बहुत कोई अब देखें हिसाब किताब किसी का एक महीने का ही करना हो, एक घर का कितनी देर लगेगी हमें, अच्छा ये खरीदा, ये यहाँ पे इतना खर्च हो गया, ये हो गया, लेकिन वहां पे पूरी जिंदगी का कच्चा छट्टा कैसे सामने आ जाएगा। सुभान अल्लाह, कि यानी दुनिया के कंप्यूटर आज आपको कितनी फास्ट डेटा दे देते, तो वहां का अल्लाह के पास का जो निजाम है हम तो सोच ही नहीं सकते। अल्लाह सरीअल हिसाब है, ये याद रखे, वहां पे कोई लंबी चौड़ा टाइम नहीं लगेगा कि अब अच्छा ये क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, नहीं, बहुत फास्ट हिसाब हो जाएगा। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामे मादूदात, और अल्लाह को याद करो अय्यामे मादूदात में। अब हमने कितने अय्याम पढ़ लिए, पहले हमारे हज के महीने हमने पढ़े कि हज के महीने कौन से होते हैं, फिर हमने हराम महीने वो पढ़े के कौन से होते हैं, अब यहाँ पे क्या अय्याम मादूदात, मादूदात दिन कौन से हैं, गिने चुने दिन कौन से हैं। ये दिन वो हैं गिनती के दिन जो 10 ज़िलहज के बाद के अय्याम तशरीक जिनको कहते हैं, यानी 11th 12th और 13th ज़िलहज के। इसमें हम कहाँ होते हैं, हाँ किधर होते हैं लोग इस टाइम पे, जो हज पे गए हैं उनको पता है ना, यानी मीना में होते हैं ना, मीना में उस वक्त टेंट्स में वो मतलब स्टे कर रहे होते हैं लोग, तो उस वक्त क्या करना है। अभी यही बात गुजरी है पिछली आयत के अंदर, यही देखें बात गुजरी है ना, फैजा कदई तुम मनासिकुम फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाकुम, इतना जिक्र करना है यहाँ पे, अगेन ताकीद है वज़कुरुल्लाह फी अय्यामे मादूदात, इन तीन दिनों में जो अय्यामे मादूदात है 11th 12th और 13th जिसमें तुम मीना में रहोगे, इसमें अल्लाह का बहुत जिक्र करना। हदीस में आता है ये खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है, तो खाओ पियो उनमें लेकिन अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा करो इन दिनों में, बकसरत अल्लाह को याद करो। और तमाम हालात में, चाहे आप उस वक्त बाजार में गए हैं, चाहे आप उस वक्त नमाज में हैं, चाहे आप उसके बाद नमाज के बाद आप तकबीरात करें, तो ईद की जो तकबीरात है वो करें, तो ये तकबीरात आप कब से शुरू करेंगे, 9th ज़िलहज की सुबह को शुरू करते हैं और 13th की असर को ये ख़त्म होती है, तो इस दौरान हर नमाज के बाद तकबीरात कहनी है। फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इत्मा अलैह, जो जल्दी करे दो दिनों में तो उस पर कोई गुनाह नहीं। दो दिन कौन से, 11 एंड 12, इसके नीचे लिख लें 11 12th ज़िलहज, जो जल्दी करे ये दो दिनों में, यानी वो 13 तक स्टे ना करे, वैसे तो 11 12 13 है ना तीन दिन मीना के, लेकिन जो दो दिनों में वापस आ गया तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, यानी कोई हरज नहीं है। इस क्यों ये फरमाया गया, इसलिए कि पहले वक्त में क्या होता था जाहिलियत के जमाने में, इस पे बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ था। कुछ लोग कहते थे कि जो कोई पहले आ गया उसका कोई हज ही नहीं, तुम्हारा तो हज ही नहीं हुआ, तुम तो 12th को ही आ गए। कुछ कहते थे कि नहीं, दो दिन से ज्यादा अगर कोई रह गया ना तो उसका हज खराब हो गया। तो इतने रिजिड थे इस मामले में, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, नहीं कोई हरज नहीं है इसमें। नहीं देखे ना, जैसे हमारे यहाँ नहीं कई फिक्री मसाइल में लोग इतने सख्त हो जाते हैं, बस कुफर के फतवे देते दे, बस अब तो तुम्हारा कोई हाज ही नहीं, अब तो तुम्हारा ये हो गया। तो वो भी इसी तरह करते थे, तो इसीलिए फरमा दिया कोई इसमें गुनाह नहीं, अगर दो दिन करके चला गया उसको कमतर ना समझो। अब हम भी देखते हैं ना, अच्छा जा रही है ट्वेल्थ को ही जा रही है, हम तो भाई एक और दिन रहेंगे, यानी जैसे हमने बड़ा कारनामा कर दिया, तुम तो जा रही, तुम्हारा तो कुछ हज कुछ खास है ही नहीं, असल तो हज हमारा ही है। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया वमन ताखरा, जो ताखीर करे फला इतमाल है, उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। ये भी क्यों कहा गया, क्योंकि वो लोग कहते थे जो 13th को भी रहेगा ना बस उसका हज ही नहीं हुआ। तो जिसने जो 3 दिन रहा वो भी कोई हर्ज नहीं, यानी जिसने डिले करा 3 डेज रहा तब भी ठीक है, जो 2 डेज रहा उसका भी हज हो गया है, ये नहीं कह सकते इसका हज ही नहीं हुआ। लेकिन देख लेना, ये भी देखेंगे आम तौर पे लोग 2 दिन के बाद क्यों वापस जा रहे होते हैं, ये बड़ी थकन हो गई, जरा आराम से जाके होटल में ना आराम दे कमरों में जरा लेटे, इतने दिन से यहाँ पे छोटे छोटे गद्दों पे आराम कर रहे हैं, बस सही से नींद ही नहीं आ रही, या फिर आए फ्लाइट हमारी जल्दी है ना, शॉपिंग भी तो करनी है, ऐसे मकासद होते हैं ज्यादातर। तो लेकिन बात वो ये कि जल्दी करे या देर करे, असल बात क्या है, लीमा ने तका, ये उसके जो तकवा इख्तियार करे, ये है शर्त, जिसमें तकवा हो। यानी असल चीज ये नहीं है बड़े सवाब का काम कि मैं तो 3 डेज रही हूं, या कोई कहे कि मैं तो 2 दिन रही हूं, असल बात क्या है, तकवा, अल्लाह का डर। देख ले आ गया फिर से तकवा की बात, यानी अल्लाह की नजर में अगर चाहे कोई 2 दिन ठहरा है लेकिन तकवा के साथ ठहरा है ना, तो ये ज्यादा भारी अमल है, ये ज्यादा बड़ी नेकी अल्लाह की नजर में, बजाय उसके जो 3 दिन के बाद आए और तकवा से खाली हो, वहां पे बैठ के बस चुगलियां कीते इधर उधर की करते रहे और फिर दूसरों को हकीर समझे, वो देखो वो तो 2 दिन के बाद ही चले गए, हम देखो कि हम तो इतने ठहर रहे हैं और ऐसा है और ये है और इनको देखो उनकी, तो ये इससे बेहतर है, वो इससे ज्यादा बेहतर वो है जो 2 दिन रहा लेकिन तकवा के साथ रहा। इसी तरह अगर कोई 3 दिन रहा है लेकिन अगर तकवा कम है अजर में कम है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन तकवा। ये 3 दिन रहना 2 दिन रहना ये नहीं मैटर है, बात यह कि आपने तकवा की कितनी पूंजी ली। तो हम इसके लिए देखिए आगे भी क्या आ रहा है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, क्योंकि अब ये आयत यहाँ पे खत्म हो रही है हज के अहकामात पे, अल्लाह से डरो। यानी जब बात टॉपिक ये खत्म होने लगा तब भी क्या है कि अब तुम वापस जा रहे होगे ना अपने घरों को, तो वापस लौटते वक्त तकवा को साथ लेके जाना। देखिए लेके भी आए थे तो क्या लेकर आए थे, ज़ादे राह में क्या लेकर आए थे, क्या फरमाया बेहतरीन ज़ादे राह क्या है, तकवा। अब वापस जा रहे थे तब भी क्या लेके जाना, तकवा। यानी हम क्या लेके जाते, शिकायतें, शिकवे, मुश्किलात, उसका रोना, ये लेके जाते, तकवा नहीं लेके जाते। हालांकि वहां पे मुश्किलात तो होंगी, ये तो है ही मुश्किलात का सफर, अगर मुश्किलात सहने से तकवा मिल जाता है तो क्या हरज है। तो जाने से पहले इंसान सोच ले कि मसलन आपको ये पता होना चाहिए कि मुश्किल आएगी, सब्र करना पड़ेगा, और जब मुझे मुश्किल आए कोई, मिसाल के तौर पे मुझे इंतजार करना पड़ रहा है एयरपोर्ट पे, इतनी लाइनें हैं, इंतजार जाहिर है इतना रश होता है, यहाँ बाथरूम जाने के लिए बाहर तक लाइनें आई हुई हैं, मैं तो कभी इतनी यूज्ड हुई नहीं इतनी इतनी देर खड़े होने के लिए। तो आप घर से ही सोच के जाएं कि जब मुझे ऐसा इंतजार करना पड़ेगा तो मैंने क्या करना है। मसलन मैं आप सोच लूँ कि मेरी ना 15 मिनट में बारी आएगी, 2-2 मिनट लग रहे हैं हर बंदे को, तो अब मैं अपने जहन में ये कैलकुलेट करूँ कि इन 15 मिनट में मैं क्या जिक्र कर सकती हूँ। जिक्र वाला हज बेहतरीन हज है ना, हमारा तो जिक्र का ये हाल है कि तलबिया भी नहीं पढ़ते, थोड़ी देर पढ़ेंगे आदमी ऊंची ऊंची पढ़ेंगे, उसके बाद भूल ही जाएंगे सारे, अपने इधर उधर लग जाते हैं। ये जो हम टीवी वगैरह में हज देखते हैं ना, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक किसकी सदाएं आ रही, तो वो जो नहीं गए ना उनको बता दूं कि ऐसा वहां पे कुछ नहीं होता, ये तो उन्होंने पीछे से लगाई होती है तो हमें सुन रही थी, वो लोग परवाह ही नहीं करते, بھول ہی جاتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنا اللہ کتنا ضروری ہوتا ہے. تو بس وہ 2 منٹ کے لیے پڑھا, اس کے بعد پھر وہی باتوں میں لگ گئے. تو حج بھی بہترین حج ذکر والا حج ہے, روزہ بھی بہترین روزہ ذکر والا روزہ ہے, سبحان اللہ. تو یہ اب آپ سوچ لیں میں نے ان 15 منٹس میں کیا کیا پڑھ سکتی ہوں, میں کتنا ٹائمز درود پڑھ سکتی ہوں, کتنی میں استغفار کر سکتی ہوں, میں کتنے اور تسبیحات کر سکتی ہوں, کتنی دفعہ میں کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہوں. تو اس سے آپ دیکھیں گا وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. تو پہلے سے سوچ کے جائیں میں نے وہاں پہ کیا کیا کرنا ہے, کس کس ٹائم پہ. اور یاد رکھیں تقویٰ ایسے ہی نہیں مل جائے گا, یہ ساری مشقت سے گزرنا پڑے گا. اور تقویٰ کے بھی لیولز ہوتے ہیں, ہر ایک کا تقویٰ ایک جتنا نہیں ہوتا, کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے. جو زیادہ والے تقویٰ والے ہیں وہ بعض اوقات دوسروں کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں, اتنا بلیٹل کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو کچھ ہے نہیں اور ایسے, اور یعنی جیسے کہ بالکل وہ حقیر کیڑے مکوڑے ہیں اور ہم سے زیادہ تو کوئی نیک ہے نہیں. وہیں پہ آپ نے اپنی نیکی گنوا دی. اگر کوئی حرام نہیں کر رہا, حرام میں نہیں پڑا ہوا, انلیس کہ کوئی ایسا کبیرہ گناہ کر رہا ہے یا ایسے کسی گناہ کی چیز میں پڑا ہوا ہے, وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی حرام نہیں کر رہا, ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں کہ نہیں وہ تو کتنے یعنی ایسے کرنے والے اور ہم کتنے نیک ہیں. جب آپ کسی کو بلیٹل کرتے ہیں نا, حقیر کرتے ہیں, تو ایکچولی اپنے آپ کو اونچا کرنے کی یہ کوشش ہوتی کہ میں دیکھو کتنی نیک ہوں اور یہ دیکھو کیسے ہیں. یہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا. تو وتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اور میں نے تقویٰ کا آپ کو اتنی بار بتایا, آپ کو پتا ہونا چاہیے تقویٰ کو پریکٹیکل زندگی میں کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں تقویٰ کی ڈیفینیشن یاد کر لینے سے نا تقویٰ زندگی میں آ نہیں جائے گا, جب تک آپ کو اچھی طرح اگر سمجھ نہیں آئی کہ تقویٰ کیا چیز ہے. شروع سے پہلے پارے میں سورہ بقرہ سٹارٹ ہوئی اور متقین کی بات ہوئی, تقویٰ والوں کی بات ہوئی, اب پھر تقویٰ تقویٰ تقویٰ. تو یہ گردان لگی ہوئی ہے, اگر ہمیں آیا ہی نہیں کہ ہم نے زندگی میں کیسے چلنا ہے تقویٰ لے کر, تو پھر کیا لیا ہم نے. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ تقویٰ مسجد میں نہیں ہے ٹیسٹ ہوتا, تقویٰ بازار میں ٹیسٹ ہوگا, تقویٰ لین دین میں ٹیسٹ ہوگا, تقویٰ معاملات میں ٹیسٹ ہوگا, ہر جگہ پہ ٹیسٹ ہوگا, لوگوں کے سامنے بھی ہوگا. جو آپ اکیلے ہیں تو اس وقت بھی ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے. ہم لوگوں کے سامنے تو تقویٰ کا لباس پہن کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر لوگ جاتے ہیں تو ہم تقویٰ اتار کے رکھ دیتے ہیں, جب کوئی آئے گا پھر تقویٰ پہن لیں گے, ہے نا. تو تقویٰ تو ہم نے کپڑے ہی سمجھے ہوئے ہیں کہ بس لوگ وہ دکھانے کے لیے ایک, بس میں بس اللہ کا بڑا ڈر ہے, ہمیں بڑا ڈر ہے, وہ بس ایک پہن لیا. اس کے بعد اللہ کا ڈر کہاں گیا, جب معاملات کرنے لگے, جب بات چیت کرنے لگے, جب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے لگے, جب میاں بیوی کے تعلقات آئے, جب اولاد اور والدین کے تعلقات آئے, اس وقت تقویٰ کہاں. تو ایک آپ کو پہلے بھی شاید میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہوا ہے کہ ایک بڑے عالم دین تھے انڈیا کے, تو وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پہ ٹرین جب رکی تو ان کے کوئی اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوں گے تو انہوں نے ان کو گنڈیریوں کی تھیلی دی تحفے کے طور پہ, نا وہ شوگر کین کی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا پیسز کاٹ کے, ان کو گنڈیری کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے کسی ساتھی خادم سے یہ کہا کہ گنڈیریوں کی یہ تھیلی لے جاؤ اور اس کو وزن کرا کے ریل میں بک کرا دو. اب چونکہ ریل میں جتنا ہینڈ کیری الاؤڈ تھا اس سے زیادہ اگر ہم لے کے جائیں گے تو بغیر کرایہ دیے ہوئے تو یہ تو خیانت ہو جائے گی نا, حالانکہ رکھ بھی لیتے تو کون سا کیا ایسا تھا, اتنی سی گنڈیریوں کی تھیلی سے کیا فرق پڑ جانا تھا. اچھا, حالانکہ دیکھیں وہ دور کون سا تھا, برٹش رول تھا اس وقت. تو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جب ہم غیر مسلموں کے ملک میں رہیں پھر جو مرضی کرو, یا مسلمانوں کے ساتھ ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے, مگر غیر مسلموں کے ساتھ ان کو تو نہ ٹیکس ادا کرو نہ کچھ کرو, کیونکہ یہ تو غیر مسلم ہیں, ان کے ساتھ جتنی مرضی خیانت کرو وہ الاؤڈ ہے. نہیں 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 نہیں, دیکھیں آپ یہاں پہ ان کا تقویٰ. تو مولانا نے جب گارڈ کے پاس گنڈیریوں کی تھیلی بھیجی تو وہ گارڈ, حالانکہ وہ غیر مسلم تھا لیکن ان کو جانتا تھا اور ان کا بہت رسپیکٹ کرتا تھا, تو کہنے لگا کہ اس کو وزن کرانے کی کیا ضرورت ہے, آپ اپنے ساتھ رکھ لیں, آپ نے کہاں تک جانا ہے, یعنی کوئی مسئلہ نہیں کہ یعنی میں آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ, کیونکہ وہ گارڈ تھا نا, تو مطلب ہے کہ میں آپ فکر نہیں کریں, آپ रख ले साथ। मौलाना कहने लगे मुझे आजमगढ़ जाना है। वो कहने लगा मैं आजमगढ़ तक तो मैं साथ ही हूँ, मेरी ड्यूटी उस वक्त तक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही साथ ले चलें। मौलाना कहने लगे भाई मुझे तो इससे भी आगे जाना है। तो वो कहने लगा कि अभी तो आप कह रहे थे आपने आजमगढ़ तक ही जाना है। मौलाना कहने लगे आजमगढ़ मेरी मंजिल नहीं है, मुझे मर के उससे आगे अल्लाह के पास भी तो जाना है, तुम बताओ वहां पे कौन सा गार्ड मेरे साथ जाएगा। ये है तकवा कि जब मैं आखरत में अपने रब के सामने खड़ी होंगी उस वक्त मुझे उसकी पकड़ से बचाने वाला कौन होगा। तो हमारा क्या हाल है, इतनी एक्सटेंट तक हम सोचते हैं यहाँ पे रिश्वत दे दी वहां पे दे दी, ये कर लिया, अगर हमारे क्लास वाले हैं सामने तो ठीक है, फिर हम तो बड़े तकवा वाले बंदे हैं, और अगर नहीं है कोई भी तो फिर क्या जरूरत है इतने तकवा। ये तो सब चलता ही है ना, तो आजकल का नॉर्म है, और फिर उसने इजाजत दे दी थी तो फिर क्या हर्ज है। नहीं, जैसे अबू बकर सिद्दीक का गुलाम था एक, तो वो लेकर आया कहीं से कोई खाने की चीज लेकर आया था, तो उन्होंने बहुत दिन से भूखे थे, तो उससे उन्होंने उसने उनको भी ऑफर की, उन्होंने इनके खा ली। जब निकली है ना तो उसके बाद उसने कहा कि ये आपने पूछा नहीं मेरे से कि मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, हमेशा आप पूछते हैं। ये असल में ना मैं पहले जब इस्लाम से पहले मैं ऐसे ही किसी को मैंने कहानत कह दी थी, फॉर्चून टेलिंग होती है ना, तो हालांकि मैं ऐसे कुछ जानता तो नहीं था लेकिन मैंने ऐसे ही किसी को कह दिया ये इस तरह से हो जाएगा, तो वो वाकई वैसे हो गया। तो आज वो बंदा मुझे मिल गया, उसने मुझे ये दिया उस इनाम के तौर पर ना, वो जो मैंने एक कहानत कही थी। तो अब ये क्या खाना जायज है, कहानत की कमाई तो हराम है। तो अबू बकर सिद्दीक आप क्या कर रहे हैं, ये तकवा होता है, वॉमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉमिट करने को वॉमिट हो नहीं रही क्योंकि पेट खाली है और एक लुकमा तो अंदर गया है। सुभान अल्लाह, तो उन्होंने उंगलियां डाल डाल के उस एक लुकमे को बाहर निकाला कि नहीं ये मैं अंदर नहीं लेके जा सकता क्योंकि ये हराम का लुकमा है। तो कौन देख रहा था, अब वो खा लिया, चलो गलती हो गई, इसके ऊपर माफी मांग लेंगे, इसमें क्या बात होगी ना, हमारे जैसा तो यही कहेगा ना, चलो कोई बात नहीं, आप क्या आप तो पेट में चला ही गया, वैसे भी निकल तो रहा नहीं। तो सुभान अल्लाह, ये उनका तकवा होता था। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम वापस जा रहे हो ना, तकवा लेके जाओ। लेकिन देखिए हम कितने सारे लोग हमने से हज करके आए, क्या तकवा लेकर आए साथ, क्या हमें पता था कि हमने तकवा लेके जाना है और तकवा ही लेकर आना है साथ अपने। अल्लाह ताला फरमाते वालमू, और जान लो, क्या जान ले या अल्लाह, अन्नकुम इलैही तुहशरून, कि तुम्हें अल्लाह के पास इकट्ठे किए जाओगे। तुम आज तुम यहां से डिस्पर्स हो रहे हो, अपने घरों को जा रहे हो, कोई कहां से आया कोई कहां से आया, लेकिन एक दिन तुम दोबारा इकट्ठे किए जाओगे, एक दिन तुम दोबारा जमा किए जाओगे। ये क्यों कहा वालमू, जान लो, हम तो सारे मुसलमान हैं, हमें तो पहले ही पता है कि हमें क्यामत आनी है और हमने इकट्ठे किए जाना है। नहीं, वालमू का मतलब है अच्छी तरह जान लो, खूब जहन में बिठा लो ये बात, ये अब तुम वापस जा रहे हो ना, याद रखना जैसे आज तुम इकट्ठे हुए थे हज के लिए तो हशर में भी इसी तरह इकट्ठे होगे। पता नहीं दोबारा कभी आओगे यहाँ पे या नहीं आओगे इस मैदान में, लेकिन एक दिन अल्लाह की जब अदालत लगेगी तो दोबारा इसी तरह वो तुम्हें जमा करेंगे। हज का सफर इंसान को बहुत ज्यादा आखरत याद दिलाता है, लेकिन अगर किसी इंसान को वहां जाके भी आखरत ना याद आए, जहाँ पे लोगों ने जैसे कफन पहना होता है इस तरह कपड़े पहने हुए, जहाँ पे गरीब अमीर बादशाह और फकीर किसी का कुछ पता नहीं है, सब एक ही लिबास में जा रहे हैं, एक ही हाल हुलिये में जा रहे हैं, उस वक्त के अंदर भी अगर इंसान को इतनी मखलूक है जब जमा है और अफरा तफरी है, किसी को किसी का पता नहीं है, उस वक्त भी आखरत का मंजर ना याद आए, हशर का मैदान ना याद आए, तो क्या लेकर आए फिर हज से, फिर हाजी साहब का एक टाइटल ही लेकर आए ना। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम हज से तकवा लेकर आए साथ, और तकवा को अल्लाह ताला हमारी इस जिंदगी का, इस जिंदगी के सफर का ज्यादा राह बना दे, सिर्फ हज के लिए ज्यादा राह नहीं, सारी जिंदगी के लिए हमारा ये सामान हो, तकवा का सामान हमारे साथ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।